हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जाधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा। निताई गौर हरिबोल 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 हरिबोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आज के इस अधिक मास की कथा में आप सबका स्वागत है। थोड़ा अधिक मास के विषय में भी आपको बताएंगे। अधिक मास जो 32 महीने और 11 दिन के बाद में आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में आने के पहले जय पताका महाराज हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट थे और करीब 21 दिन तक एडमिट रहे वो कोमा में, और जब होश में आए पहली बार तभी अधिक महीना ऐसा शुरू होने वाला था कुछ दिन के बाद में।
इंग्लिश हिंदी?
इंग्लिश बोलो, इंग्लिश चलेगा, हिंदी ठीक है। तो कुछ ही दिनों बाद में अधिक मास शुरू होने वाला था, मतलब 2015 की बात थी वो। उस साल आषाढ़ महीने में अधिक मास था तो उसके पहले वो एडमिट हो गए थे। फरवरी में जो कुछ जो भी कुछ सभी से एडमिशन मीटिंग थी उसके बाद में एडमिट हो गए थे। तो जैसे ही उनको पहले होश आया तो उन्होंने सब लोगों को संदेश दिया, सब भक्तों को बताओ अधिक मास का व्रत पालन करो। तीन बातें बताई कि सब लोगों को अधिक मास का व्रत पालन करना चाहिए, जितना हो सके उतना सब लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, और तीसरी बात बताई कि वैष्णवों का अपराध इस महीने में नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति डेथ बेड पे होता है या बहुत दिन के बाद में होश में आता है या लास्ट अभी जा रहा है और आपको 2 साल मिलने वाला नहीं है, ऐसे जब होता ना मोमेंट, लास्ट मोमेंट्स, तब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो बोलता है, बाकी के ऐसे टाइम पास बातें नहीं बोलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कम समय में बोलना है उसके विषय में बोलता है। तो 21 दिन में होश आने के बाद में सबसे पहले बोले गौरांगा, उसके बाद में तुरंत ये बताया। इसका मतलब अधिक महीने का पालन ये हमारे लिए, भक्तों के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे सब व्रतों का निर्माण मनुष्यों के लिए होता है ना, जानवरों के लिए तो होता नहीं है। कुत्ते के लिए कोई व्रत है, कोई बिल्ली के लिए व्रत है, कोई पंछी के लिए है, कोई कोयल के लिए, ऐसा होता है कभी क्या? केवल मनुष्यों के लिए होता है व्रत। व्रत यानी जो स्वेच्छा से हम लोग असुविधा स्वीकार कर लेते हैं, विलिंगली वी एक्सेप्ट सम इनकन्वीनियंस। तो स्वेच्छा से जब हम कोई असुविधा स्वीकार करते हैं तो जानवर तो कोई असुविधा स्वीकार नहीं कर सकता है, स्वेच्छा से भी नहीं और फोर्सफुली भी नहीं। स्वेच्छा से असुविधा शुरू करने का जो टेक द चेयर एंड कम हियर, स्वेच्छा से जो असुविधा लेने का जो प्रवृत्ति है, वो शक्ति जो है ना, शक्ति जो है वो मनुष्यों में है, केवल मनुष्यों को दी गई है। तप करने का जो शक्ति है वो मनुष्यों के दी गई है, तपो दिव्य पुत्र कादि। ऋषभ देव जी महाराज जो है ना वो अपने पुत्रों को बताते हैं कि ये जीवन जो है वो तप के लिए दिया है, और तपह का मतलब वही स्वेच्छा से प्राप्त की हुई असुविधा, और कोई भी असुविधा नहीं, वो असुविधा जो भगवान को प्राप्त करने में हेल्प करेगी उसको तप कहते हैं, उसको व्रत कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है आपको भी जो एनीवे, सो ये अधिक मास वो व्रत है जो सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, सब व्रतों में जितने भी व्रत दिए गए हैं सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका परिणाम जो है ना वो ये है कि भगवान ने स्वयं इस व्रत को परम 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 लाभ देने का निर्णय खुद ले लिया है। कथा ऐसे है कि नैमिषारण्य में जो साधु लोग बैठे थे वो सूत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि कैसा होगा कल्याण मनुष्य का, अभी कलयुग आ रहा है, बहुत डर लग रहा है हमको देख के। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है इस बात का कि कलयुग जब आने वाला है तो साधु लोग डरे हुए हैं कि कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, और हम लोग कलयुग में है फिर भी आराम से रह रहे हैं। जस्ट सी, सो मिरेकल, सो सरप्राइजिंग। जब जय विजय को शाप मिलता है पृथ्वी पर जाना होगा, तो जाने के विचार से ही डर जाते हैं। वो भी थोड़े समय के लिए देना पड़ेगा शाप के खाली पालन करने के लिए, लेकिन हम लोग वो आराम से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। श्याम देव कृपा बिंदु दिया, तो वो सुदु गोस्वामी फिर उनको बताते हैं कि कलयुग के लिए कल्याणकारी क्या चीज़ है। उसमें बहुत सारा वर्णन है, उसमें पुरुषोत्तम व्रत का वर्णन है, और उसमें वो कथा आती है जो सुदु गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब पांडव लोग वनवास में थे तो कुछ समय वृंदावन धाम में एक काम्य वन है उसमें थे वो, और वहाँ पर कृष्ण उनको मिलने आते हैं, और उनकी वनवास की अवस्था देखकर उनको बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, वेरी पेनफुल फॉर हिम। तो वो देखकर उनको बड़ा क्रोध आता है कौरवों पर, और वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि कहते हैं कि अभी के अभी मैं विश्व को जला दूंगा, भस्म कर दूंगा पूरा, आपका ये कष्ट जिन्होंने भी दिया है उसकी वजह से मैं पूरा विश्व को भस्म कर दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज कैसे भी करके उनको थोड़ा शांत करते हैं, फिर वो उनको एक कथा बताते हैं कि आपका इस कथा सुनने के बाद जो आपको उपदेश मिलेगा उससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो वो कथा ये है कि वो 32 महीने और एक 11 दिन के बाद में एक महीने का निर्माण हुआ, 30 दिन वाला महीना, क्योंकि चंद्र वाला जो गणित है चांद्रीय यानी कि लूनर कैलकुलेशन, और सौर गणना यानी सूर्य के आधार पर जो गणना है दिन की महीने की, वो हर दिन में 2 घंटे का डिफरेंस है सूरज के एक दिन का और चंद्र के द्वारा जो एक दिन है उसमें 2 घंटे का अंतर है, 29 घंटे कुछ मिनट सूर्य का और 27 घंटे कुछ मिनट चंद्र का। तो वो 2-2 घंटे का हर दिन का जो गणित है ना, वो जमा हो के 32 महीने के बाद में 30 दिन पैदा होते हैं, वो एक महीना ही निर्माण होता है। तो वो जो महीना है, अभी हर एक महीना कोई अधिपति है, वैष्णव कैलेंडर देखेंगे ना तो हर एक महीने में एक नाम है, अच्युत है, वामन है, केशव है, दामोदर मास है, ऐसे हर एक महीने का एक अधिपति है। वैष्णवों के हिसाब से वैष्णव नाम है उनके लिए, बाकियों के हिसाब से और भी नाम है, लेकिन एक एक देवता उसका अधिपति है, और उन देवताओं को उनका व्रत अनुष्ठान करने के बाद उनका अपना ऑफरिंग और समिधा आहुति प्राप्त होती है, उससे हम लोग उनको देते हैं, वो स्वीकार करते हैं यज्ञ रूप से हो या कोई तपस्या रूप से हो। लेकिन यह महीने में क्या होता है, हर महीने में सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है, उसको संक्रांति कहते हैं, वो हर महीने होती है, बहुत लोगों को पता नहीं है, उनको खाली एक ही पतंग उड़ाने वाली कथा संक्रांति मालूम है, वो है मकर संक्रांति, जिसमें सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। लेकिन हर महीने में कोई ना कोई राशि प्रवेश करता है, तो इस महीने में कोई राशि में सूर्य प्रवेश नहीं करता है। तो फिर जैसे ही कोई राशि में प्रवेश नहीं करता है तो उस महीने में मुहूर्त नहीं निकलते हैं। बड़ी टेक्निकल बातें हैं बहुत, अधिक मास में क्यों शादी नहीं करते हैं, क्यों दुकान नहीं खोलते हैं, क्यों मोटरसाइकिल लेते नहीं, क्योंकि अधिक मास में उसका कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों मुहूर्त ही नहीं है। और मुहूर्त क्यों निकलते हैं, कि देवता लोग उस मुहूर्त में आते हैं और अपना आहुति अर्पण करते हैं, पूजा स्वीकार करते हैं, आप गणेश जी को स्थापन करेंगे, नवग्रह को स्थापन करेंगे, किसी को स्थापन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे या मंत्र बोलेंगे, लेकिन इस महीने में वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो मुहूर्त ही नहीं है उनके लिए। बड़े टेक्निकल बातें ये, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि इस महीने में कोई मुहूर्त नहीं है, किसी को कोई भौतिक लाभ नहीं है, इसलिए कोई देवताओं का अंतर्भाग नहीं है उसके अंदर, इसलिए सारे देवताओं ने उसको त्याग दिया उस महीने को, कि इस महीने से कोई मतलब नहीं है। तो बड़े दुखद दुखी हो गया वो मैनाम, देवी के रूप में था। अच्छा त्याग दिया, ठीक है त्याग तो देते हैं, कोई लोगों को पसंद नहीं, चेहरा पसंद नहीं है, कोई शरीर यष्टि पसंद नहीं है, तो ठीक है त्याग दिया। लेकिन निंदा करना और दूसरी बात हो गई ना, तो बहुत निंदा भी करते हैं उसकी, निर्भत्सना करते हैं, तो ये मैंने देवी को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। फिर वो दुखी दुखी और तिरस्कृत निर्भत्सृत जो देवी है वो बहुत परेशान होकर विष्णु के पास जाती है। एक तो लोगों की दृष्टि से कोई अच्छा गुण नहीं उसके अंदर, लोग क्या देखते हैं आपको, जो क्या क्या देखते हैं आपसे, मुझे क्या मिलेगा, लोगों को और आप में इंटरेस्ट नहीं है। आप इंपॉर्टेंट तब तक है जब तक आपसे कुछ प्राप्ति है, आपके पास कुछ ऐसा है जो मेरे को आगे लाभ दे सकता है, नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं आपको हमारे। लोग किसी पर प्रेम नहीं करते सिवाय अपने पर, ये ध्यान रखना, लोग केवल खुद पर प्रेम करते हैं, और खुद के प्रेम के लिए जो अनुकूल है उन लोगों पर प्रेम जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रेम असली खुद पर करते खाली। तो ये महीने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, कुछ व्रत अनुष्ठान करने का कोई लाभ नहीं है, सब देवताओं ने सब लोगों ने उनको त्याग कर दिया, त्याग करके निंदा भी किया, यहां तक कि बताया कि ये मल मास है, मल नाम भी सब बुरा दे देना, बोलते ना कि हम लोग बोलते ना कि लंगड़िया काणिया ऐसा कुछ नाम देते ना, ऐसा घिलौना नाम दिया मल मास, मल यानी कि जो हम लोग छोड़ते हैं ना सुबह मल, गंदगी को मल कहते हैं, मैंने कोई मल मास कि मल साक्षात मल है ये ऐसा बता दिया। बड़ा दुखी हो गई देवी, बड़ी दयनीय अवस्था हो गई, सब जगह तिरस्कार, सब जगह पर स्वीकृति अस्वीकृति है ना, निंदा निर्भत्सना। लेकिन इस देवी का जो कार्य है इसके बाद में वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को दुनिया में बहुत कष्ट होते हैं, तिरस्कार होता है, निंदा होती है, लेकिन उधर ही तड़पते रहते हो, लेकिन ये देवी भगवान विष्णु के पास गई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। संकट दुनिया में सबको आते हैं, लेकिन सब लोग भगवान विष्णु का आश्रय नहीं लेते हैं, कोई कुछ भी नहीं करते हैं, कोई फिर देवताओं के पास जाते हैं, कोई ग्रहों को पास, शनि के पास जाते हैं, कोई इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उनका व्रत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अज्ञान के वजह से टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये विष्णु के पास गए बहुत महत्वपूर्ण है। संकट आने पर कहाँ जाना चाहिए पता होना चाहिए आपको, बीमार पड़ गए तो कुछ डॉक्टर के पास जाना आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आपको दुख ही दुख है आगे, रोग का दुख है और न ठीक होने का भी दुख होगा आगे जाकर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नम्रता पूर्वक अपनी दयनीय अवस्था को देखते हुए जब हम विष्णु का सहारा लेते हैं, परम भगवान का सहारा लेते हैं, तो हम बड़ी सुरक्षित रहते हैं, सब कुछ कष्ट होने के बाद भी हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हमने आसरा उस व्यक्ति का लिया है जो सही रूप में सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं। अभी क्या हुआ देखिए, दीन अवस्था का क्या बोलते हैं हम, दीन दीन किसको कहते हैं, जिसके पास कुछ गुण नहीं है, कुछ संपत्ति नहीं है, कुछ ऐश्वर्य नहीं है, कुछ प्रभाव नहीं है, कुछ ऐसे किसी को इम्प्रेस करने लायक चीज नहीं है, उसको दीन कहते हैं। लेकिन असली दीनता वो नहीं है। अर्जुन भी बहुत धनवान थे, ऐश्वर्य संपन्न वीर थे, शूर थे, ऐश्वर्य संपन्न थे, प्रभावशाली थे, कीर्तिमान थे, बहुत सारे थे, लेकिन मैं कहूंगा वो फिर भी दीन थे। दीनता का सही व्याख्या यह है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को असहाय समझना और भगवान के चरणों में रखना, इसको दीनता कहते हैं। बहुलाश्व भी दीन थे, राजा थे वो, और श्रुतदेव भी दीन थे, गरीब थे बहुत। तो धन धन होना या धन नहीं होना, ये दोनों अवस्था में अपने आप को दीन समझकर भगवान की शरण लेना, ये सही दीनता है, दिस इज रियल रियल दीनता। और ऐसे दिनों के नाथ भगवान दीनानाथ होते हैं। अगर आप खुद को अगर दीन समझते हो सब कुछ होते हुए, तो आपके नाथ दीनानाथ कृष्ण है। तो सब कुछ होते हुए, ऐश्वर्य होते हुए दीन कैसे आप अपने आप को समझ सकते हैं? उसका फॉर्मूला एक ही है कि ये सब कुछ जो मेरा है और जो मुझे लगता है मेरा है वो टेम्पररी है, वो एक दिन छूटने वाला है, वो मेरा है ही नहीं एक्चुअली, वो लगता है कि मेरा है, कभी भी छूट सकता है, और छूटता है ना वो कि नहीं छूटता है। एक दिन युवराज थे, दूसरे दिन जंगल में घूम रहे हैं पांडव लोग, बहुत दिन तक दुर्योधन युवराज थे, एक दिन मर गए और किसी और ने ले लिया, वो राज्य वहीं रहता है, राज्य कहीं यहां से जाता नहीं है, खाली आप आते हो कहते कि मैं राजा हूं, फिर आप जाते हो दूसरा आके बोलता है मैं राजा हूं। राज्य पृथ्वी वही होती है, वो किसी की नहीं होती है, वो भगवान की होती है हमेशा। हम लोग खाली आते हैं बोलते हैं अभी मेरा है, झंडा गाड़ दिया है, अभी शक्ति है, झंडा उखाड़ने की किसी भी शक्ति नहीं है, तो अभी मेरा राज्य है यहाँ पर। या तो मृत्यु आपको मार देती है, या तो कोई और शक्तिशाली आदमी आपके हरा देता है, तो दूसरा झंडा आता है वहां पर, फिर वो राजा बन जाता है ना। तो यही जिसको पता है कि ये सब कुछ है या नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ टेम्पररी है, वो मेरा तो है ही नहीं है, सब बोरो किया हुआ धन है, उधार लिया हुआ धन है। तो उधार लिया धन पर कोई गर्व नहीं करता है बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ बाकी लोग तो करते हैं, उधार लेके गाड़ियां घुमाते हैं, उधार लेके शादी का ड्रेस खरीद के लेके आते हैं, और शादी में बड़ा बहुत जोरदार कपड़ा पहन के खड़ा रहते हैं, लेकिन सब भाड़े का होता है, वो किराए का उधार का होता है। उधार लेकर शादियां करते हैं, सब लोग मजा करते हैं, लेकिन लड़की का पिता बहुत दुखी रहता है उस समय कि कभी इतना लोन ले आए, उसको रहना भी है कई महीनों तक, शादी तो एक दिन में खत्म हो जाएगी। तात्पर्य कहने का ये है कि दीनता जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, वो हमें प्राप्त करना चाहिए, अचीव करना चाहिए उसको। सब कुछ होते हुए भी स्वयं को दीन समझना ज्ञान के आधार पर, और उस भावना के ऊपर भगवान की शरण इच्छा करना, शरण की इच्छा करना। ऐसे दीन व्यक्ति के दीनानाथ भगवान होते हैं, दीनों के नाथ दयाल भज राधे गोविंद। वो दीनानाथ जो है ना, वो सबके नाथ बनने को तैयार है, लेकिन सब लोग दीन बनने को तैयार नहीं है, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। वो सबको सहारा देने को तैयार है, लेकिन हम लोग कष्ट पाने पर भी उनका सहारा लेने को तैयार नहीं है, और लेते भी है तो स्वार्थ के लिए लेते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, और कुछ मिल गया तो फिर वो सहारा छोड़ देते हैं, है ना। अभी आप कुछ मांगने गए और मिल गया तो फिर भूल जाते हैं उसको। जैसे सुग्रीव कैसे इतना परेशान था, छुप गया था उस पर्वत पर, फिर राम आए, उसने वाली का वध कर दिया, सूर्य को राज्य दे दिया, भूल गया सब कुछ, 4 महीने में भूल गया, चतुर्मास के अंदर ही भूल गया सब, एंजॉयमेंट करने में लग गया चतुर्मास के अंदर भी। फिर लक्ष्मण को जाकर हिलाना पड़ा उसको, फिर वो जग गया वापस। ऐसा होता है, जो कष्ट है तो तब तक ऐसे भगवान के पीछे भागते रहते हैं, थोड़ा कष्ट मिट गया तुरंत ऐशो आराम चालू, फिर भगवान भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, फिर भगवान साथ झटका देते हैं दोबारा, एक बार जगा देते हैं, देखो जो दिया था ना वो मैंने दिया था, उस पर मशगूल नहीं होना है, आपको सेवा करते रहना है। लक्ष्मण ने खाली वो धनुष का प्रत्यंचा लेकर आवाज किया उसका, तो सब हृदय थर्रा गए सबके, एकदम लाइन पे आ गया तुरंत, बोले क्या करे बताओ, कोई बात नहीं जो बताया वो करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो बताया वही करो। तो वही लग गए काम पे। ये हमारी अवस्था है, सब लोग स्वार्थी हैं, अपने अपने ही लगे दिल में लगे रहते हैं, अपना अपना ही काम में लगे रहते हैं। परमार्थी लोग बहुत कम है इस दुनिया में जो दूसरों के कल्याण का सोचते हैं सही रूप में। जैसे आप अपने बच्चे का कल्याण सोचेंगे, लेकिन वो आपका ही बच्चा है इसलिए आप सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि आपका कुछ कनेक्शन है, स्वार्थी कनेक्शन उससे। लेकिन जिसका कोई कनेक्शन नहीं है उसके बारे कल्याण के बारे में सोचना बहुत दुर्लभ है इस दुनिया में। जो भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है, जहां भगवान सबसे ज्यादा कृपा कर सकते हैं, वहां पर हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा विरोधाभास है दुनिया में इस। और ऐसा नहीं कि कलयुग में सत्ययुग से चला रहा है, सत्ययुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, किसी भी युग हो, सब लोग अपने अपने फंसे हुए हैं। एनीवेज, तो ये देवी दीन होकर जब भगवान का सहारा लेती है तो क्या चमत्कार होता है। देखो, जो कोई भी नहीं थी, कोई पद नहीं, कोई स्थान ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्वहीन, कीर्तिहीन, पदहीन, ऐसी स्थिति वाली जो देवी है, भगवान का सहारा लेते ही भगवान क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं मैं आपका पति बन जाऊंगा, मैं आपको अपना बना लूंगा, मेरा नाम आपको दूंगा, आपका नाम पुरुषोत्तम मास हो जाएगा। मैं जो पुरुषोत्तम भगवान हूं उसके जितने भी गुण है वो सब मैं आपको दे दूंगा, आप में सारे गुण प्रकट हो जाएंगे, और आपके समय में जो भी कोई व्रत करेगा मेरे लिए उसको लक्ष लक्ष गुना में लाभ दूंगा, और आपके महीने में कोई भी मेरे लिए व्रत करेगा उसको पुरुषोत्तम व्रति के नाम पे जाना जाएगा, और वो पुरुषोत्तम व्रति के शरीर में सारे देवता निवास करेंगे, मैं खुद निवास करूंगा, और अंत में वो व्रत पूरा करने वाले व्यक्ति को मैं स्वयं अपने धाम में ले जाऊंगा। ऐसे बौछार कर दिया, पूरा वर्षाव कर दिया वरदानों का, जो कुछ भी नहीं था, यूजलेस मलमास था, उसको माला माल कर दिया भगवान ने, कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ, यह है शरणागति का परिणाम। शरणागति लगता है क्या, हम लोग अभी दीन होके किसी के चरणों में गिर रहे, इतना अपने आप को मिस्टर नोबडी बना के, हाँ कितना कठिन काम है ये, क्यों करना है ऐसे, बहुत तकलीफ होती है ऐसा करने में। लेकिन वो करते ही क्या होता है वो देखिए आप, एक बार वो आपने हृदय से कर लिया तो कैसे भगवान को प्रेरणा मिलती है आपका कल्याण करने के लिए। तो दीन बनना कठिन है, लेकिन दीन अगर आप बन गए तो देखिए दीनानंद क्या कृपा करते हैं। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को कि आप इस व्रत को करिए, आने वाले अधिक मास में आप ये व्रत कीजिए, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। उन्होंने और द्रौपदी ने और सभी ने मिलकर पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया, और वो व्रत का वर्णन सूत गोस्वामी ने सभी संतों को बताया, और वो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उसका वर्णन आता है, और आप हमारे लिए सबके लिए उपलब्ध हो गया हो। ऐसे भी वो कलयुग की शुरुआत में किसी ने बोल दिया, उधर को रिकॉर्ड नहीं किया, वो छोड़ दिया उसको उधर, तो आपके पास पहुंचेगा क्या वो? उसका सिस्टम है ना पूरा। आज हम लोग इतना 5000 के ऊपर साल के बाद में यहाँ बैठे हुए हैं भक्ति विधान में, बहुत कलयुग आगे बढ़ चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है जो नई नई होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हो रही है। मोबाइल नाम का राक्षस सबके जीवन में आ गया है जो कुछ साल पहले नहीं था, सब तबाही मचा दिया है सब जगह पे, इतने सारी घटनाएं हो रही है ना। ऐसा कोई भी बिना आपको एक जख्म भी किए हुए कोई आपका परम नुकसान कर सकता है तो वो मोबाइल है। आप सोचिए इसके बारे में, कितना मनुष्य जीवन का कीमती समय वो खा लेता है। मैं कल ही में किसी को बोल रहा था कि आप जब करो आपको 16 माला करना चाहिए, तो बोले समय नहीं मिलता है प्रभु जी, बहुत सारे काम होते हैं, वो डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब वो आई एम ट्राइंग बट यू नो वेरी डिफिकल्ट। और वो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली आपको मोबाइल पर मैसेज देते हुए मिलेगा, तो इतने मिनट जो आपको बार बार ये मैसेज 50 मैसेज जा रहे हैं, उसमें 2 माला 3 माला तो हो जाएगी ना आपकी, और अगर आप डिटरमाइंड है तो 16 माला भी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल पर वो बैठकर जिसका कोई एक्चुअल लाभ नहीं है, ऐसे मैसेज भेजने में आपको टाइम है लेकिन भगवान का नाम देने में टाइम नहीं है। दुर्भाग्य इसी को कहते हैं, दुर्भाग्य और कोई नहीं है। तो मैंने क्या कहा, एक भी आपको जख्म न करते हुए भय सबसे भयंकर नुकसान करने वाली वस्तु है वो, उसको आप यूज कीजिए, लेकिन पहले भगवान के लिए जो कर्तव्य है उसको पूर्ण कीजिए, उसके बाद में आपको जो तथा कथित प्रचार करना है उस पर वो कीजिए आप। लेकिन सब लोग मिलकर क्या करते हैं, जब जब का समय होता है तभी उस पर लगे रहते हैं, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में माला, और जो माला में ध्यान होना चाहिए सारा ध्यान उसमें होता है। इसलिए मैं आपको सबको विनती कर रहा हूँ, सबसे पावरफुल व्रत क्या है मालूम है इसमें महीने में, मोबाइल को बंद करके 16 माला पूरा करना। सब लोग लीजिए उस व्रत को, कोई दुनिया कोई गवर्नमेंट कोई दुनिया कोई बॉम्ब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ गिरने वाला नहीं है, अगर आप उस समय मोबाइल नहीं देखेंगे तो। और अभी गिर भी जाता है तो आपका नाम हाथ में भगवान का नाम है, मुंह में जब भगवान का नाम है तो भगवत धाम चले जाएंगे आप, नोट वरी अबाउट इट। और मेरा विश्वास है कि नहीं होता है कुछ, मैंने कई बार देखा है, अभी हमारे डॉक्टर इधर बैठे हुए हैं उनका भी ये अनुभव है, उनको अधिकतर मंगलारती वगैरह समय में कभी कॉल वॉल नहीं आता है, क्योंकि वो चाहते हैं मंगलारती में और दर्शन के लिए जाना, भगवान भी देख रहे हैं कि मेरा बहुत प्रामाणिक भक्त है, उसको देखना है करना है कुछ। कुर्सी एनीवेज, तो थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया, लेकिन मैं कह रहा था कि इतना कलयुग आगे आ गया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो पहले नहीं थी, फिर भी ये मैसेज जो है वो जो सूत गोस्वामी ने बताया था, जो भगवान ने युधिष्ठिर को बताया था काम में वन में पांडवों के लिए, वो आज भी आपके लिए उपलब्ध है एज इट इज, कृपा है ना ये, किसी ना किसी भक्त ने परोपकार के कल भावना से वो मैसेज संभाल के आगे 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 पहुंचा है ना प्रभु जी, इसलिए हमारे पास पहुंच गया ना वो, नहीं तो हमारे पास कोई डिस्टॉर्टेड मैसेज पहुंचता उसका। यही परोपकारी संतों की कृपा है हमारे ऊपर। अगर परोपकारी संत नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो पता ही नहीं चलता क्या है। अगर स्वार्थी संत होते तो फिर वो अपने को बता दे कि देखो मुझे 1,000 रुपये दो फिर मैं आपको मंत्र दूंगा, फिर 5,000 दो फिर आपको आगे का नियम बताऊंगा, फिर ये करो फिर ये दूंगा, ऐसे ही होगा ना सब कुछ। अभी ऐसा भी चल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, सब जगह पर, बहुत जगह पर ऐसे है। अगर आप गुरुजी आपके घर पे आना है तो आपको 5 लाख जमा करना पड़ता है पहले, फिर वो उनके चरण कमल आपके घर पे रखेंगे। ऐसे कई संत लोग हैं इस दुनिया में, कई जगह पर है और उनका करोड़ों लोगों का फॉलोइंग है, लेकिन है रूल, वो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ये व्रत का महात्म्य जो है ना वो इतना सुंदर तरीके से हमारे तक पहुंचाया गया है केवल संतों की कृपा से। हरे कृष्णा। तो ये व्रत हमको करने में बहुत उत्साह होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति को बचने के लिए बहुत आवश्यक है ये, और भगवान का परम लाभदायी व्रत है ये। और इस महीने में और एक बात ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करता है इस महीने में, कोई मुहूर्त नहीं निकलते हैं, तो कोई भी पुण्य कार्य इस महीने में नहीं हो सकता है। आप करेंगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा आपको, तो उसका चैनल ही बंद है इस महीने में। तो क्या करना है फिर आपको? आपको करना वही है जो भगवान से संबंधित है, भगवान की संतुष्टि के लिए, बस उतना ही करना है। बाकी कुछ करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, समझे आप। इसमें इस महीने में दान का बहुत महत्व है, तो आपने जाकर स्कूल में नोटबुक बांट लिया तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। तो लाभ कैसे होगा? अगर आपने उसको भगवान से कहीं ना कहीं जोड़ दिया तो उस दान का लाभ होगा आपको। ऐसे ही चैरिटी कर दिया आपने, जाके अंधों को ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन करते हुए आगे पीछे भगवान का नाम कीर्तन प्रसाद नहीं दिया, केवल समाज कार्य के रूप में ऑपरेशन किया, तो जीरो वैल्यू मिलेगा आपको इस महीने में। पुण्य का पुण्य भी जमा होने जाएगा आपका। यह महीने का ही विशेषता है, ये महीने में केवल भगवान के साथ जुड़े हुए कार्य ही आपको लाभ देंगे, इसलिए वो पुरुषोत्तम मास का व्रत कहा गया उसको। बाकी महीने में समझो आप भगवान के लिए कुछ नहीं करते, कुछ ना कुछ पुण्य करते, पुण्य जो है ना उसका रिकॉर्ड चित्रगुप्त रखते जाएंगे आपका, वो पुण्य के लिए आपको स्वर्गवास, आगे कुछ लाभ मिलेगा, कुछ धन संपत्ति मिलेगी वगैरह वगैरह। पुण्य करने से क्या होता है? भौतिक लाभ होता है। भौतिक लाभ का मतलब क्या है? जो समय के साथ समाप्त हो जाता है, उसका एक्सपायरी डेट है, उसको पुण्य कहते हैं। पुण्य केवल आपको वो फल देता है, अच्छा आनंद वाला, सुख वाला, जो कुछ समय के बाद में उसका एंड हो जाता है। जैसे आप नया मोटरसाइकिल लाया, लाइफ लॉन्ग चला सकते क्या उसको? नहीं, 5 साल के बाद में वो डिस्कार्डेबल हो जाएगा, कंडम हो जाएगा, वो उसको बेचना पड़ेगा या तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस दुनिया के कोई भी लाभ हो गए, जितने भी लाभ है दुनिया के भौतिक लाभ, वो सब समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। और ये महीने में जो लाभ है ना वो समय के साथ नहीं समाप्त होने वाला लाभ है। और मनुष्य के लिए ये महीना हो या नहीं महीना हो, यह महीना हो और कोई महीना हो, लाभ वाला पुण्य वाला महीना हो, लेकिन पुण्य कार्य के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। पता है आपको क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? पाप तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब उसके लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती पाप तो हो ही जाते हैं। पुण्य के लिए थोड़ा मेहनत करते हैं लोग, व्रत करते हैं, ऐसा करते हैं, वो पेड़ के पास जाओ, 4 प्रदक्षिणा करो, उधर जाओ दान दे दो, उधर मंत्र बोलो, शनि के 15 मंत्र बोलो, वो तो उसको तिल का तेल चढ़ाओ, वो तिल का दीपक उसके पेड़ के नीचे रखो, ऐसा बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड प्लान रहते हैं उसके। लेकिन उसके लिए लोग मेहनत करते हैं और कुछ गेन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कुछ लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाप के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं करते, वो तो स्वतः ही हो जाता है। लेकिन दोनों ही चीज़ हमारे लिए खराब है। और मैं एक स्टेटमेंट अभी करूँगा आपके सामने कि दोनों में से अगर कोई ज़्यादा खराब है तो वो पुण्य है। आप बोलेंगे ऐसा तो अभी कोई सुना नहीं था बचपन से, सब माँ बाप बोलते आए पाप मत करो, पाप मत करो, अच्छा काम करो, और आप बोल रहे वही हमारे लिए खराब है, वो इससे ज़्यादा पुण्य खराब है। क्यों, कभी सोचा है इसके बारे में आपने? पुण्य करने से क्या होता है? सुख मिलता है। है ना। सुख मिलने से क्या होता है समझो, अभी आपको ऐसा पुण्य है आपका कि आपको 7 दिन अभी जलेबी खाने को मिलेगी रोज, अलग अलग टाइप की, कभी केसर वाली, कभी ये वाली, कभी वो वाली, कभी गुलाब जल वाली, ऐसे बहुत अद्भुत जलेबी आपको 7 दिन खाने को मिलेगी। और आप 7 दिन खाएंगे, अच्छा आनंद लगेगा, आपको मजा आ जाएगा। 8वें दिन वो आपका पुण्य समाप्त हो गया, आपको भी जलेबी नहीं मिलेगी, तो 8वें दिन आपकी क्या स्थिति होगी? आप 7 दिन के पहले दाल चावल खा रहे थे रोज, ठीक थे, आपका ओके था, आप सब कुछ, 7 दिन जलेबी खाया दाल चावल के साथ, और 8वें दिन फिर दाल चावल आया वही, तो क्या होगा? आपको पहले दाल चावल में जो आनंद आया था ना, सुख मिला था, अभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको जलेबी की याद आ रही है, उसको तड़प रहे उसके लिए। ये पुण्य का प्रॉब्लम है, वो आपको ना आदि बना देता है, उसका जो पुण्य का फल कुछ समय के लिए है उसके लिए वो हमको आदि बना देता है, और पुण्य का काल समाप्त होने पर, वो ना होने पर बहुत कष्ट होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे पुण्य करने के बाद स्वर्ग में निवास मिलता है, तो हम स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में क्या कहें आपको, ये तो 7 दिन का जलेबी कुछ भी नहीं है, स्वर्ग में तो शरीर ही ऐसा है जिसका कोई बदबू ही नहीं है, सुगंध है, मतलब अभी 50 लोग यहाँ बैठे ना, 50 प्रकार की खुशबू यहाँ मंडराती रहेगी, हर एक के शरीर से जो खुशबू निकलेगी वो ऐसे आसमान में बैठेगी, और मैं यहाँ बैठा हूँ तो सबके सुगंध का लाभ मुझे मिलेगा, मेरे सुगंध का लाभ आपको मिलेगा, ऐसा शरीर है वहाँ पर, कोई डिओ स्प्रे की जरूरत नहीं है, कोई इत्र की जरूरत नहीं है, शरीर ही कोसों कोस तक सुगंध देता है। फिर वो सुगंध में वाले शरीर में जो आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, वहाँ को वर्णन नहीं कर सकते आप, इंद्रिय आपके ऐसे स्ट्रांग होंगे कि आपको वही, यहाँ पर जलेबी खाएंगे तो वहाँ खाएंगे तो आपको इतना आनंद मिलेगा, उसका ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंद्रिय ऐसे बनी हुई है, जिह्वा ऐसे बनी हुई है, ऐसी चीज़ है वो, वहाँ पर फूल केवल खिलते हैं, मुरझाते नहीं है। सोचिए आप, ऐसा इमेजिन कीजिए कि नए नए फूल आ रहे हैं और कोई मुरझा ही नहीं रहा है, निकाल के रखो या पेड़ पे रखो, ऐसा ही खिला हुआ रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, इसलिए वो देवता लोग बार बार पुष्प पुष्टि करते रहते हैं, क्योंकि अभी इतने सारे फूल है, अभी कहीं ना कहीं अच्छा काम करेंगे तो भगवान का जन्म हो गया, किसी का कुछ हो गया तो वो डालते रहते जाके, कोई कमी है ही नहीं उसकी, सुगंध उल्टा अलग है। नंदनवन का क्या वर्णन करें इंद्र का, अमरावती का, रंभा उर्वशी मेनका का क्या सौंदर्य का वर्णन करें, इतना आनंद है, खाना पीना रहना हवा टेम्परेचर और भोग इतने सुंदर है, और आप वहाँ रह रहे हैं अभी, जो भी आपके हिसाब किताब है आपको सब उसका आनंद मिल रहा है। और क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति, एक दिन वो सब अकाउंट खत्म हो जाएगा तो डिपार्चर का समय आ जाएगा, और वो आनंद का आदत लगने के बाद में फिर आपको पृथ्वी पर जन्म मिलेगा दोबारा, वो बदबू वाले शरीर में, वही भौतिक जगत में, मतलब पृथ्वी में, वो भी भौतिक जगत ही है लेकिन यहाँ पर दूसरा माहौल है, और यहाँ पर आप आओगे तो क्या होगा फिर आपको, फिर आप यहाँ पर अस्वस्थ हो जाओगे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे, आपको ऐसी ऐसी आदत लगी हुई है, यहाँ पर किसी में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, यही आपको समझ में नहीं आएगा, आपको भी स्वर्ग में गए नहीं होंगे शायद, आपको याद भी नहीं होगा। अभी मैं यहाँ का एग्जाम्पल लेता हूँ, समझो आपका एकदम सृष्टि में बिना बेडरूम वाला घर समझो आपका होगा 1 RK, क्योंकि बेडरूम ही नहीं है उसके अंदर, और आप उसमें रहे 10 साल तक आराम से, फिर थोड़ा सा पैसा आया तो आप 1 बेडरूम हॉल किचन में गए, उसके बाद में 2 बेडरूम हॉल किचन में गए, वो 10 साल रहे, फिर ऐसा एक हादसा हुआ कि सारा पैसा डूब गया आपका, और आपको अभी बेच कर वापस उसमें 1 RK में जाना पड़ रहा है, पड़ेगा अभी क्या करेंगे, वो पैसा गया आपका सब कुछ, तो आपको ज़बरदस्ती 2 बेडरूम का हॉल बेच फ्लैट बेच के उसी में जाना पड़ा वापस, तो कैसा लगेगा आपको? आप 10 साल रह चुके उधर, आराम से रह चुके, हम 25 साल तक चाल में रह चुके हैं, जब टॉयलेट भी बाहर था और गंदा भी था और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करते थे, जैसे चाल में 25 साल रह चुके हैं, पूरे जवानी के बचपन के दिन वहाँ गुजारे हैं, अभी अगर ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ वापस जाना पड़ेगा तो कैसा लगेगा आपको? बहुत कष्ट होगा, बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। वहाँ थे ओके थे, वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से वापस आए तो वही जगह जो ओके थी वो इतनी तकलीफ वाली बन गई, क्यों हो गई? क्योंकि हर एक सुख जो है ना आपको उसका आदत बना देता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुण्य जो है ना वो खराब है, क्योंकि पाप अच्छा क्यों है? क्योंकि पाप का जब फल मिलता है ना तो आदमी बहुत तड़पता है, रोता है और भगवान को याद करता है उस समय, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है। पाप का, पुण्य का फल जो सुख है और जो मिलने को भोगने को मिलता है तो तुरंत आदमी उस सुख में रममाण हो जाता है, और बाकी जिसने वो सुख दिया था उस भगवान को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। फिर जब दर्द आता है तो वापस उसको याद आती है। इसलिए जो सही व्यक्ति है जिसको शास्त्र का ज्ञान हो गया है वो पाप से इतना डरता नहीं लेकिन पुण्य से डरता है। पाप वो करता नहीं है और पुण्य के पीछे लगता नहीं है, इसलिए वो भक्ति में लगता है, क्योंकि उसको पता है दोनों जगह खतरा है। एक जगह भूल भुलैया वाला सुख वाला खतरा है और एक जगह कष्ट वाला खतरा है, लेकिन दोनों खतरे ही खतरे हैं। इसलिए अधिक मास हो या नहीं हो, किसी भी महीना हो, कोई भी महीना हो, पाप पुण्य के चक्र में मत पड़ना, भगवान की भक्ति में लगे रहना। और कोई अच्छा कार्य भी कर रहे हो, हम लोग सुनामी में गए थे समझो, उत्तराखंड के आपदा में गए थे, इधर भूकंप में भुज में गए थे, बहुत सारा समाज कार्य किया वहां पर, बहुत हजारों लोगों को दवाई दिया, क्या क्या कंबल दिए, बहुत सारा ऐसा फिलंथ्रोफी का कार्य किया, लेकिन साथ में भगवान का प्रसाद दिया और भगवान का निरंतर कीर्तन किया, लोगों को भगवान के विषय में बताया, मालाएं दी, जप करवाया, किसी भी व्यक्ति को भगवान के स्पर्श के बिना कोई हेल्प नहीं किया, क्योंकि हमको पुण्य इकट्ठा नहीं करना है, हमको भगवत धाम के अक्षय खाते में अपना जमा करना है धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है भक्तों के लिए सबसे मतलब मोस्ट प्रोबेबली डेंजरस चीज क्या है? सब भक्त लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, सबका लक्ष्य है, रास्ता भी क्लियर है, लेकिन पता है एक पॉसिबिलिटी क्या है? हम सब लोग ना भगवान के धाम के जाने के प्रयास में अपने आप को स्वर्ग लोक में प्राप्त कर सकते हैं एक दिन। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए हर समय ना करने के कारण वो जो भगवत भक्ति का कार्य है उसका रूपांतर पुण्य में हो जाएगा एक दिन। वेरी गुड वर्क इफ यू कीप डूइंग तो क्या है वो? पुण्य, पुण्य में गणना होगी उसकी। और वेरी गुड वर्क को अगर आप भगवान में नहीं जोड़ देंगे तो वो पुण्य खाते में ही जमा होते जाएगा। ये बहुत बड़ा छोटा सा कैच है उसके अंदर। तो व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? सदैव सतर्क रहना कि ये कृष्ण के लिए करना है, और कृष्ण के लिए कर रहे हैं कि आपके लिए कर रहे हैं ये कौन तय करेगा? आपकी चेतना तय करेगी, कॉन्शियसनेस। हु एल्स नोज? एक आदमी आपको खाना बांटते हुए दिख रहा है, अभी वो क्या खाना बांट रहा है, किस लिए बांट रहा है, उसको भी पता है ना कि उसको बच्चा चाहिए, पुत्र चाहिए, कि पुत्री की शादी होनी चाहिए, इसलिए बांट रहा है, कि उसको स्वर्ग में जाना है इसलिए बांट रहा है, कि भगवान के आनंद के लिए बांट रहा है, उसको भी पता है। लोग खिचड़ी खा रहे हैं उसको पता नहीं क्या हो रहा है। उसका जो भी हेतु है, कॉन्शियसनेस है, वो उसको पता है और भगवान को पता है, और उसके अनुसार उसको फल मिलते रहेगा। अभी आपको तय करना है कि मैं खिचड़ी बांट रहा हूँ वो भगवान के लिए ही बांटूंगा, भगवान का की प्रसाद ही बांटूंगा, हरे कृष्णा बोल के बांटूंगा, ये आपका अगर कॉन्शियसनेस है तो वो भगवान के अक्षय खाते में जमा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा थिन लाइन है उसके अंदर, पुण्य और अकर्म के बीच में। पर हमें चाहे अधिक मास हो या और कोई मास हो, अकर्म ही करना है, और अकर्म मतलब केवल भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाने वाला कर्म। और उसमें भी अगर आप परोपकारी कर्म कर रहे हैं तो और भगवान को आकर्षित करता है वो। अब अकर्म अगर सेवा खुद के उन्नति के लिए कर रहे हैं तो एक बात है, अच्छी बात है, लेकिन वो अकर्म अगर आप भगवान के लिए परोपकार के लिए कर रहे हैं, किसी और अन्य जीव के उद्धार के लिए, जैसे गुरु महाराज संत लोग करते हैं वैसे, तो भगवान के एवं प्रिय हो जाते हैं हम लोग। सारा भक्ति का मामला क्या है? अल्टीमेटली भगवान के प्रिय होने का प्रयास है ना, सारा सारा प्रयास भगवान को प्रिय होने के लिए है, भगवान के हम प्रिय हो जाए, हमें भी वो प्रिय हो जाए, वो भी हम पर प्रेम करें, हम हमारे लिए, हम उनके लिए प्रिय हो जाएं, यही सारा प्रयास है अल्टीमेटली। जप जो है, साधना जो भी क्यों करते हैं, सच्चा भक्त वो है वो अधिक मास का व्रत भी मेरे अक्षय खाते में धन जमा हो जाएगा गोलोक वृंदावन उसके लिए भी नहीं करेगा वो। सच्चा भक्त जो है वो सारा व्रत जो है वो करेगा केवल भगवान के संतुष्टि के लिए, ओनली टू प्लीज हिम। मुझे उसमें कुछ मिले या ना मिले नो प्रॉब्लम, आपकी संतुष्टि है तो मेरा व्रत सफल है। इसका उदाहरण है श्रीधर कोलवेचा जो हम सुबह भी बता रहे थे, उनका जीवन था केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, खुद को कुछ मिले ना मिले, कष्ट मिले, सुख मिले, आनंद मिले, वरदान मिले, कुछ भी नहीं मिले, भगवान संतुष्ट है ना तो ठीक है, वरदान भी ठीक है, और भगवान संतुष्ट नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान की संतुष्टि चाहिए। सम सिद्धिर हरितोषणम, यही एक परमोच्च एकमेव उद्देश्य है भक्ति मार्ग का, और वो जिसको समझ में आता है और उस भाव से जब ये अधिक मास का व्रत करता है ना, तो उसके लाभ तो आप वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णनीय लाभ उसको होते हैं, क्योंकि ये पावरफुल व्रत जो आपके लिए भी अपना खाता भर सकता है, अक्षय खाता, ये व्रत आप केवल भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं, तो भगवान आपके रेडी हो जाते हैं, आपको अपना बना लेते हैं तुरंत। भगवान का सबसे ज्यादा प्रसन्न क्या है? निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम सबसे पावरफुल चीज है दुनिया में, तो भगवान को भी खरीद लेती है, भले आप उनको खरीदना नहीं चाहते होंगे, आपका भाव नहीं रहेगा हाँ भगवान को मैं खरीद लूंगा, अपना बना लूंगा, वश में कर लूंगा, ऐसा भाव भक्त का नहीं होता है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि उसके वश में चले जाएं, भगवान चाहते हैं कि उसका दास बन जाएं, जैसे अर्जुन के सारथी बन गए वो। भगवान कितने दयालु, देखो जिस पर जो ऐसा अनन्य भक्त होता है भगवान का, वो उसके लिए भगवान स्वेच्छा से उसके दास बन जाते हैं। इसलिए उस भगवान का गुणगान करना चाहिए इस महीने में, क्योंकि ऐसा कोई है क्या प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष कोई अमेरिका का, इंग्लैंड का, मलेशिया का, चाइना का, जो अपने प्रजाजन का दास बनने को तैयार है रियली हृदय से, ऐसे आके बोलेगा कि मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा, अभी तुम्हारा कष्ट मुझे सह नहीं जा रहा है, ऐसा कोई राजा है क्या आपके पास? इस दुनिया में नहीं हो सकता वो, लेकिन भगवान में वो विरोधाभास जो है ना, वो कॉन्ट्राडिक्शन, वो एक साथ में विराजमान है, एक ही व्यक्ति में वो दीनता है जो अपने भक्त का दास बनने को भी तैयार है, और वही व्यक्ति महान विश्व का नियंता भी है, विश्व का नियंत्रक, कंट्रोलर, मेंटेनर, आशीर्वाद देने वाला, सबको कल्याण करने वाला व्यक्ति भी वही है, सर्व नियंत्रक, सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यमान, सर्व कीर्तिमान, वही व्यक्ति है जो एक साथ में इतना दीन भी हो सकता है, जो अपने भक्त का दास बनकर उसका रथ चला सकता है, ड्राइवर ही कर सकता है। ये जो विरोधाभास है ना, ये केवल भगवान में हो सकता है। और एक व्यक्ति है जिसमें विरोधाभास हो सकता है, वह है भगवान का भक्त। कैसे? राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, वो एक शाप मिल गया जिसको काउंटर करने की शक्ति भी थी, लेकिन तुरंत राजवस्त्र उतार कर कोपिन पहनकर नदी किनारे में आके बैठ गए। कितनी नम्रता है उसके अंदर, देखो आप, कोई साधारण चीज नहीं है। एक राजा को, कोई इंडिया का राजा नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड का नहीं, पूरे विश्व का राजा है वो, किंग ऑफ द वर्ल्ड। चक्रवर्ती सम्राट मतलब ये चक्र जो है ना, इसका आवर्त जो है, इसका सम्राट है वो। कितनी शक्ति होगी उसके अंदर। अरे उसके राज्य में किसी की मांस खाने की, हिंसा करने की, नशा करने की, जुआ खेलने की हिम्मत नहीं है। वो प्रेम से पालन कर रहे हैं, वो डर के भी नहीं पालन कर रहे, प्रेम से सब नियम पालन कर रहे। एक व्यक्ति भी नहीं मिला, एक जगह भी नहीं मिली जहां पर ऐसे चार पाप होते हैं। ऐसा राजा है वो, ऐसा फोर्सफुली कोई पॉलिटिक्स करके, कोई पैसा दबा के गवर्नमेंट बना राजा नहीं है, स्वयंभू ऐसे राजा है वो। वो राजा को जब श्राप मिलता है, एक बच्चे ही बच्चे के मुख से, इमेजिन, एक बच्चा है वो, हाँ उस राज्य की प्रजा है वो, ब्राह्मण है लेकिन, तो श्राप दे दिया है, तो तुरंत उसको एक श्राप देकर काट सकता था वो, लेकिन बोला नहीं, भगवान की कोई इच्छा है इसके अंदर, नहीं तो मुझे कभी भूख प्यास की तकलीफ नहीं हुई, आज कैसे हो गई? वो भी ऐसे कई दिन तक मैं प्यासा भूखा रह सकता हूँ, लेकिन आज ऐसे कैसे हो गया? मतलब भगवान का कोई इसमें योजना है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, काउंटर नहीं करना चाहिए, उसके साथ में जूझना नहीं चाहिए। और वो इतना बड़ा राजा, तुरंत घर जाके मुकुट उतार दिया, राजदंड उतार दिया, गहने उतार दिए, अलंकार उतार दिए, वस्त्र उतार दिए, जूता तक उतार दिया, केवल कोपिन पहनकर एक तरह से भिक्षुक बनकर चला आया, सब कुछ छोड़ दिया उसने, वो जंगल के किनारे आके बैठ गया, नदी किनारे। पांडव भी देखिए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए वो, पूरे विश्व के सम्राट बन गए वो, जैसे ही कृष्ण चले गए सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, ऑन द स्पॉट त्याग दिया। ये उसका प्रमाण है कि जब वो जंगल में थे तभी भगवान से अटैच थे, राजा बने थे तभी भगवान से अटैच थे वो, उनको वो राज्य बनकर, राजा बनकर सुख में कोई रुचि नहीं थी, भगवान है इसलिए कर चल रहा है सब कुछ। प्रूफ क्या है उसका? जैसे भगवान ने छोड़ के चले गए विश्व को, ये भी छोड़ के चले गए, कोई भी चीज साथ में नहीं लिया उन्होंने, उल्टे दुखी हो गए, एकदम परेशान हो गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, ऐसे उनके स्पॉन्टेनियस एक्शन था वो, प्लान नहीं था कि हाँ अभी हम भक्त हैं तो भगवान चले गए तो हमको भी ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो ठीक है चलो छोड़ के जाते हैं, नहीं तो देखा स्पॉन्टेनियस एक्शन, छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, इसलिए भगवान इतना प्रेम करते हैं उनके ऊपर। उनको पता है कि ये राज्य के लिए नहीं जी रहे हैं, राज्य के लिए नहीं तड़प रहे, ये मेरे लिए जी रहे हैं। मैं हूं तो सब कुछ है उनके लिए, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वनवास में चल रहे तो भी उनको कोई तकलीफ नहीं है, भगवान है ना, भगवान का सहारा है, हर जगह भगवान सहारे में थे तो कोई बात नहीं, वनवास भी ठीक है। सीता भी ऐसी ही थी, आप वन में जा रहे हो, मैं अयोध्या में क्या करूंगी, मेरे लिए अयोध्या जंगल बन जाएगा, और आपके साथ जाऊंगी तो अयोध्या छोड़ के जाऊंगी तो जंगल भी अयोध्या बन जाएगा, क्योंकि तो जहां पर आप है वहां पर अयोध्या है, तो जंगल हो या राज्य हो, अयोध्या का एक्चुअल फिजिकल लोकेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके होने से अयोध्या जैसा ऐश्वर्य संपन्न स्थिति मेरे लिए है। वो मैं नंगे पैर चल रही हूँ या तो मखमली रत्न जड़ित पादत्राण पहन के चल रही हूँ, दोनों समान है जब तक आप हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। एक एकाग्रता से भगवत चिंतन और भगवत ध्यान होना चाहिए एज ओनली गोल ऑफ लाइफ, तो ही हमारा जीवन जो है ना सफल है। तो ये मत समझना कि खाली अधिक मास में सब कुछ करना है, बाकी हम लोग एक बार 14 जून आ गया ना बस फ्री हो जाएंगे, उसके बाद में बाप रे कितना तकलीफ हो गया कब ये व्रत समाप्त होता है, ये दो माला का लिया है व्रत, लेकिन क्या बताऊँ आपको, दो माला करना इतना डिफिकल्ट है, एक्स्ट्रा 16 माला का ही इतनी परेशानी, उसको दो माला का और ले लिया, बाप रे वो आम नहीं खाना है इस महीने में, ऐसा व्रत लिया मैंने, आम भरे इतना तो मैं मर जाऊंगा अभी अभी एक बार 14 जून खत्म होने दो, 15 जून को मैं देखो अभी क्या करता हूँ ऐसा हमारा भाव है, ऐसा रहेगा तो वो व्रत में कोई मतलब लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि महीना इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन व्रत भी आनंद से और प्रेम से और उत्साह से करना चाहिए, है ना। अभी आप बोले बच्चा हो गया आपको, अरे बच्चा क्या, अरे भी लैटरिन कर रहा है अपने पोटी में कर रहा है, बार बार धो लो और करो, कितनी बार बदलना है, धोना है, लटकाना है, जगह नहीं, दोरी में बची, दोरी पर जगह नहीं बची, इतने कपड़े लटक रहे हैं, क्या करें, अभी रात को बुखार भी आ जाता है कभी, रात रात तक नींद नहीं मिलती है, क्या परेशानी है ये बच्चे का अभी, ऐसे अगर माँ बोलने लगेगी तो कैसा रहेगा वातावरण लेकिन ऐसे माँ नहीं बोलती कभी भी, वो जो भी कष्ट वाला काम भी बड़े प्रेम से करती है, कष्ट की होता भी है, कभी कभी बोल भी लेती है, लेकिन फिर भी वो बड़े प्रेम से उसको करती है चीज को, इतना भी काला कलूटा बालक होगा तो उसको बहुत सुंदर दिखता है वो, क्योंकि सुंदरता उसके आंखों में होती है, बालक में नहीं होती। प्रेम एक ऐसी वस्तु है ना, प्रेम से किसी भी क्रिया का और किसी भी वस्तु का रूपांतर दिव्यता में हो जाता है, अगर प्रेम है किसी चीज में आपको, प्रेम से वो कितनी भी वैसी चीज होगी वो भी एकदम दिव्य हो जाती है, भव्य हो जाती है वो चीज, केवल प्रेम को ऐड करने से सारे गणित इक्वेशंस समीकरण बदले हो जाते हैं जब प्रेम आता है, तो बीच में सारा व्यवहार खत्म हो जाता है, सारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है जैसे प्रेम आता है। और भगवान भी, जब आप भगवान पर प्रेम करते हो वो भी सब कुछ छोड़ देते हैं, सब नियम वम छोड़ देते हैं, क्या नियम है, तो दुर्योधन ने आपको निमंत्रण दिया है तो आपको जाना चाहिए, ऑफिशियल सब कुछ काम किया है, नियम से ढंग से किया है, रीति रिवाज से किया है, तो जाना चाहिए, और जा भी रहे हैं, निकल भी गए घर से जाने के लिए, वो तो वहां तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन वहां रुकने के बजाय वहां से आगे चलते रहे और वहां पर वो बड़ा 56 भोग का लाइन लगा के, क्यूजीन लगा के खड़ा है, आ जाएंगे भगवान तो अपना स्वार्थ पूरा कर लेंगे, उसमें सीधा आगे चले जाते, आगे चले, सब लोग परेशान है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनी तो ये था, एड्रेस तो इधर ही था, आगे चले गए झोपड़ी में चले गए, सीधे विदुरानी के झोपड़ी में, विदुर के झोपड़ी में चले गए, कोई निमंत्रण मतलब कोई संकेत नहीं है कि मैं आऊँगा आ रहा हूँ, ऐसे कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं मिला है, तो वो भी विदुर भी बाहर अपने काम से चले गए, विदुरानी घर पे अकेली है, और भगवान प्रवेश करते हैं घर में, प्रेम से प्रवेश करते हैं। हाँ जैसे प्रेम होता है तो कोई दस्तखत देने की जरूरत नहीं कि मैं आ रहा हूँ, जहाँ प्रेम है तो हम लोग घुस जाते हैं ऐसे ही, बोले प्रभु जी लंच का टाइम है, भूख लग रही, खाना बनाओ, आप भी बड़े प्रेम से बोले प्रभु जी आप आ गए, बोलो तुरंत खाना बना के देंगे, जो भी है प्रेम से खिलाएंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा उसके अंदर, कोई ऑफिशियल कोई नियम नहीं होता है उसके अंदर प्रेम में। तो ऐसे भगवान चले गए तो क्या हुआ, विदुरानी तो एकदम भाव विभोर हो गई, अरे भगवान आ गए मेरे, क्या क्या है, घर में कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, अभी इतर खाना भी खत्म, कुछ धान्य नहीं है, कुछ नहीं है, क्या तैयारी नहीं, कुछ ना कुछ मांग के लाती, कुछ भी नहीं है, और भाव विभोरता भी है, दिल में आनंद भी हो रहा है, तो केले मिले, केले तो केले मिले तो केले देने में, अपने केले मिल गए, केले खिलाऊंगी भगवान को, केले खोल रही है वो, केला हाथ में लेके फेंक रही है, वो दान छिलका हाथ में दे रही है, भगवान छिलका खा रहे हैं, दूसरा केला खोल रही है, दूसरा केला भी फेंक दिया, छिलका हाथ में दिया, भगवान बड़े मजे से खा रहे हैं। तब तक खबर पहुंच जाती है विदुर जी को जहां पर भी थे कि भगवान आए हैं तुम्हारे घर पे। वो भाग के आता है और देखता है कि क्या कर रही है पगली ये औरत पगली पगली हो गई है, क्या कर रही है, केले फेंक रही है और छिलके खिला रही है, और भगवान बोल रहे शश डिस्टर्ब मत करो, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है ना भगवान को केले में इंटरेस्ट है, ना भगवान को केले के छिलके में इंटरेस्ट है, भगवान उसका प्रेम का स्वाद ले रहे हैं। हमें अभी भी याद है हमारे राधानाथ महाराज जी, मैं मतलब अपने प्रेम का विषय निकला इसलिए बता रहा हूं आपको। तो एक जमाना था ऐसे, उन्होंने तय किया कि मैं मीरा रोड के सबके घर में जाऊंगा। तो मेरे हाथ में सब वो आया कि भाई प्लानिंग बनाना है उसका, कहाँ पहले जाएंगे वगैरह। तो पहले वो हमारे सीता देवी के घर पे आए, याद है आपको, छोटे से थे आप तभी, सबसे पहले नंबर उनके घर पे गए, और फिर वैष्णव प्रभु के घर पे गए, फिर ऐसे करते करते देवकी सुत प्रभु के घर पे गए जो हमारे बाजू वाले बिल्डिंग में रहते, और वो उनको पता था कि आने वाले, लेकिन जैसे महाराज आए ना वो इतने भाव विभोर हो गए ना, जो बताया था ना क्या क्या करना है वो सब भूल गए वो कंप्लीटली। बोले मृदंग किधर है, वो मृदंग 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 ऐसे करके ढूंढ रहे हैं, मृदंग मिला ही नहीं अल्टीमेटली, करताल के वो भी नहीं मिला, वो दक्षिणा का पैकेट बना कर रहा था वो भी पता नहीं किधर रखा। एक्चुअली ना पूरी तरह से भाव विभोर हो गए थे वो, मैं देख रहा था और मैं महाराज को देख रहा था, महाराज मुझे देख रहे थे, हम दोनों हंस रहे थे दूर दूर के देखकर इसकी अवस्था को देखते हुए। और उस घर में जो भी बताया गया था ना उसमें एक भी नियम का पालन नहीं हुआ कि महाराज के लिए क्या क्या करना है, लेकिन महाराज इतने खुश थे उसमें, इतने खुश थे, क्योंकि एक भक्त का निरागस निष्पाप जो निस्वार्थ जो प्रेम था ना उसका उन्होंने अनुभव किया, बड़ा आनंद आया उनको, बहुत आनंद आया। तो किसी ने नियम से उनको वो सब कुछ दिया होगा, वो जो भी कुछ करना है वो किया होगा, लेकिन आनंद कहाँ आता है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम से विभोरता होती है। तो भगवान ने यही बोला, मैं आया और क्या है, तुम्हारी पत्नी इतनी मूर्ख है ना, क्या कुछ रिवाज नहीं, कुछ ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, छिलके खिला दिया मुझे उसने। मुझे लगा मैं आया तो कम से कम केला तो था, कम से कम केला तो खिला दी, तो केला फेंक के मुझे छिलका खिला रही है, कैसी है तुम्हारी पत्नी है, ऐसा नहीं भगवान ने बोला। प्रेम प्रेम उस छिलके को भी ना अमृत तुल्य स्वादिष्ट बना सकता है, जो केला स्वादिष्ट और अमृत तुल्य है वो छोड़कर छिलका भी बन सकता है अगर वो प्रेम से दिया गया तो। और हमारे भगवान भी इतने अजीब और इतने दिव्य हैं कि वो भी ऐसे ही हैं, वो ऐसे नहीं बोलते कि अरे क्या मैं बिल्कुल नाराज हूं आपके ऊपर, आपने मुझे बहुत दुख दिया है, केले का छिलका खिला दिया आपने मुझे, मैं इतना दुर्योधन का आमंत्रण छोड़ के घर पे आया हुए, क्या तरीका है, क्या कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे घर वापस में ऐसे भगवान नहीं बोलेंगे, क्योंकि तो वो भी बड़े दिव्य व्यक्ति हैं। आप अगर भाव वाले हैं तो वो परम भाव वाले हैं वो भाव ग्राही है ना। इसलिए इस महीने का व्रत जो है ना वो आप कष्ट से मत कीजिए, इसलिए हमेशा बताया जाता है कि वो व्रत जो इस महीने में लेना है ना वो आप ऐसा कष्ट वाला व्रत मत लीजिए, व्रत लीजिए जो आपको थोड़ा असुविधा हो लेकिन पालन करने में आसानी भी हो, ताकि आपको भी वो पूरा करने का समाधान मिले और वो प्रेम से आप कर सकें, सब तड़प तड़प के रो रो के करेंगे तो कैसे आनंद मिलेगा। और जब हम तड़प तड़प के करते हैं ना तो हमारे ज्यादा ध्यान वो तड़प में होता है, भगवान में नहीं होता है। अरे अभी वो दूसरी माला बाकी एक्स्ट्रा वाले भी, वो रात को नींद आ रही है अभी, मैं नहीं कर सकता उसको, और वो कैसे भी करके कर रहे हैं, तो हमारा चेतना वो तड़प में है, वो कष्ट में है, वो भगवान में नहीं है, संतुष्टि वगैरह दूर रहेगी भगवान की, तो हमारा करने वाला यत्न जो है वही भी तड़प में है। तो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट व्रत में क्या है, आपका भाव, क्या व्रत आपने लिया वो भगवान को ज्यादा इंप्रेस नहीं करता है, क्योंकि वो व्रत पालन करने की शक्ति भी वही आपको देते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कोई आप बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, आप खाली क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं बस, बाकी वो जो कर कर रहे हैं और कर सक रहे हैं आप, वो सब उनकी कृपा है, बाकी कुछ सब भारी नाटक है, केवल अंदर का भाव जो है वो ही स्वीकारते वो, और वो अपना है, बाकी सब भगवान का दिया हुआ है, व्रत करने की शक्ति भी उनकी दी हुई है, खाली अंदर का जो प्रेम है ना वो आपका है बस, वो आप अगर आप अच्छी तरह से जताओगे उसको तो भगवान आपके प्रसन्न रहेंगे आपके ऊपर बहुत। तो ऐसा ये महीना है, इसमें नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है, तीर्थ में जाने का बहुत महत्व है, श्रीमद् भागवत को पठन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, भगवान नाम के जप को बहुत ज़्यादा महत्व है। जो हमारे 64 तत्व हैं उसमें से 6 तत्व हम लोग ज़्यादा मेहनत से फॉलो करते हैं ना, भगवान नाम का स्मरण, भगवान के भक्तों का संग, भगवत श्रीमद् भागवत का पठन, धाम का निवास, भगवान के विग्रहों की पूजा और तुलसी का पूजन, ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उसको बहुत ध्यान से करते हैं पालन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है वो, और वो तो हमारा बस जीवन भर का है। और वही चीज़ भी इस महीने में करेंगे ध्यान से तो भी आपको उसका प्रचंड लाभ मिलेगा। लेकिन ये एडिशनल चीज़ें क्यों दी गई है, ताकि आपको ध्यान रहे कि अधिक मास है, इसके में भगवान को आपको प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करने का आसान तरीका इस महीने में उपलब्ध है, बाकी महीने में नहीं हो सकता है शायद। सभी देवी देवता भी लालायित हो जाते हैं जिस वो व्रत को पालन करने वाले व्यक्ति से। और हरि कथा में अपने आप को रममाण रखना चाहिए, बी एब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली। कुछ भी करते हैं आप, घर का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हरि के ध्यान में, हरि के चिंतन में व्यस्त रहिए आप। क्या लाभ है उसका? जैसे ही हरि कथा का चिंतन होता है या श्रवण होता है, आप सारे दुखों से मुक्त हो जाते हो। हरि कथा का महात्म्य यही है, कितना भी आपको कष्ट हो, अगर आप दिल से हरि कथा सुन रहे हो, आपके सब पीड़ा कष्ट यातना मिट जाते हैं। भले आज की घटना हो गई हो, कल की हो गई, परसों हो गई हो, आगे होने वाली हो, चिंता है आपको, भगवत कथा जब आप श्रवण कर रहे हो, सब चिंता से आप मुक्त हो जाते हो। भगवत कथा सुनते ही जैसे सुन रहे आप, जो प्रसंग, जो वस्तुस्थिति जहां पर है ना, ऐसी जहां पर कथा हो रही है, सारी नदियां विश्व की वहां पर एकत्र हो जाती है, अपने आप प्रकट हो जाती है, दिखेगी नहीं आपको लेकिन प्रकट हो जाती है, क्योंकि वो नदियां की जो देवियां हैं, जो देवियां नदी स्वरूप, उनको भी हरि कथा चाहिए, जरूरी है उनके लिए। जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो उस स्थान में प्रकट हो जाते हैं, जहां पर आप जाना चाहते हो दर्शन करने के लिए, शायद अधिक मास में जाना चाहते हो, वो सब एक कथा के इस प्रसंग में विराजमान हो जाते हैं। 18 पुराण, जो व्यक्ति रूप पुराण रूपी व्यक्ति हैं, भक्त है भगवान के, वो भी प्रकट हो जाते हैं। नारद आदि सारे ऋषिगण प्रकट हो जाते हैं, हनुमान जैसे महान भक्त जो हैं वो कथा सुनने के लिए प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इसे कहा गया है कि इसमें कथा का आयोजन किया है तो कोई आया ही नहीं सुनने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कथा आरंभ करो, नारद मुनि व्यासदेव अगस्त्य में सब लोग आ जाएंगे, हनुमान जी भी आ जाएंगे, और आप कथा कीजिए आराम से, प्रेम से कथा कीजिए, निरुत्साह होने की जरूरत नहीं। हम कैसे करते, हमको ऑडियंस चाहिए हमेशा, हमारा उत्साह ऑडियंस से देखे पड़ता है। लेकिन कथा ऑडियंस के लिए तो करते ही हैं, लेकिन कथा एक्चुअली भगवान के आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान को भी अपनी कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। इमेजिन कितनी अद्भुत बात है ना, उनकी कथा उनको ही सुनना बड़ा अच्छा लगता है। इसका प्रूफ क्या है समझो, आपका बचपन की कथा आपको सुनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, कि बचपन में आप वो शरारती थे, आम तोड़ते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, कूदते थे, यहाँ से माखन चुरा के खाते थे, वहाँ से कुछ बॉल चुराते थे, वो छुप जाते थे, ऐसा आपका भी आप ही बताने लगेंगे आपकी शादी होने के बाद पत्नी के सामने, फिर भी आपको मजा आ जाएगा बहुत, तुरंत आप बालक बन जाएंगे मन से एकदम 2 मिनट के अंदर, है ना। जैसे आपके बालक लोग समय की कथा अभी कोई बताएगा, तुरंत आप बालक हो जाएंगे, एकदम नटखट हो जाएंगे, एकदम भाव में। वैसे ही भगवान है, उसका प्रूफ क्या है, जैसे वो द्वारका में सब लोगों को भगवान के बालपन की कथा सुनने की बहुत इच्छा थी, सब लोग ने भगवान की बाल कथा सुनी थी, जब वो खुद बालिकाएं थी अपने अपने घर में थी, तब कथाएं उनके मतलब मैसेज आता रहता था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मन में आकर्षण था उनके प्रति। फिर आगे जाकर युवतियां हो गई, वो भी युवक बन गए और इनका विवाह हो गया, लेकिन बाल लीलाओं का केवल श्रवण ही किया था, देखा तो कुछ नहीं था। तो शादी हो गई, फिर वो द्वारका में बस गए सब लोग, तो बाकी जितने भी लोग थे वहाँ पर ब्रज में, वो सब वहीं रह गए। एक ही व्यक्ति खाली ब्रज में भी थी और वो द्वारका में भी थी और मथुरा में भी थी, वो कौन थी? रोहिणी माता। तो वो रोहिणी माता थी वहाँ पर, तो एक ही आई विटनेस है वहाँ पर, तो सब रानियाँ बोल रही, मैया बोलो ना हमको, जरा कथा सुनाओ भगवान का। तो वो हमेशा क्या बोलती, देखो मुझे कथा बोलने में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही कथा बोलूँगी ना, वो आ जाएंगे कृष्ण बलराम, प्रकट हो जाएंगे। और जैसे ही ब्रज वाली कथा शुरू हो जाएगी ना, तुरंत दारुक को बोलेंगे, दारुक रथ बनाओ, हम जा रहे हैं ब्रज अभी। और अगर गए वो समझो बैठकर, तो वापस लौटने का गारंटी नहीं है। ब्रज चीज ही ऐसी है, वृंदावन धाम। एक बार चले गए वो, अभी तो बालक नहीं रहे वो, लेकिन फिर भी अगर चले गए वहां पर तो वो लौट के नहीं आएंगे। वहां पर कितना प्रेम करते लोग उनके ऊपर। तो आप क्या चाहते हो, आपके पति आपके साथ में रहे कि वो जाए और आने का गारंटी ना हो, ऐसा अच्छा लगेगा आपको? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो नहीं, हमको वो चाहिए, हमारे पास चाहिए, ठीक है कथा नहीं सुनेंगे। लेकिन किस दिन बाद फिर कथा की इच्छा वापस ऊपर, फिर ऊपर हर बार। फिर एक बार कहते हैं कि अभी ऐसा होना चाहिए कि कथा भी होनी चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए। हमारा मन कैसा होता है ना, जब हमारा किसी चीज में लग गया ना मन, तो फिर वो हर प्रकार के उपाय सोचता है कि कैसे किया जाए, हाउ टू डू इट विद डिटर्मिनेशन। तो सोचा कि एक बार ऐसे करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो आएंगे ना तो हम लोग सुभद्रा को खड़ा कर देंगे, वो दूर क्षितिज में, मतलब हॉराइजन दूर कहीं आने का दर्शन आएगा ना, तो यहाँ पर ना नॉक कर देंगे, तुरंत दस्तखत दे देंगे, आपको जागृत करेंगे, कथा बंद कर सब चले जाएंगे हम लोग, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आएंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नोबडी इज देयर, ऐसा करेंगे। और वो महल के सारे दरवाजे बंद कर देंगे, खिड़कियां बंद कर देंगे, और एक ही दरवाजा रखेंगे, उसमें वो सुभद्रा जी खड़ी रहेंगी, अंदर आप बैठिए आसन पे, और हम लोग सब लोग हजारों कई पत्नियां बैठ जाएंगी और कथा आरंभ करेंगे। इतना फुल प्रूफ अरेंजमेंट हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है। कथा सुनेंगे, जब आएंगे तो कथा बंद करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने काबू में नहीं होती। यू प्लान इन सर्टन वे, बट उसमें कुछ कुछ होता है ऐसा जो आपने सोचा नहीं था, उसका प्लानिंग भी नहीं किया था। तो सुभद्रा जी को क्या होगा, इसका कोई सोचा नहीं किसने। सुभद्रा जी भी कान लगा के खड़ी है और कथा सुन रही है भगवान की, जैसे भगवान की कथा सुन रही है, भाव विभोर हो जाती है, वो शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं, परम भाव में चले जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है। अभी नॉक कौन करेगा? दरवाजे बाहरे पर जो खड़ा है वही गिर गया है, और अंदर पता भी नहीं कि वो गिर गया है। और कृष्ण बलराम श्योरली वहां पर आ जाते हैं। तो वही जगन्नाथ जी का निर्माण है, बहुत लंबी कथा है, सुनना है आपको, सुना दूं? तो भगवान आ जाते हैं, वो देखते हैं कि तो सुभद्रा जी तो बेहोश होकर पड़ी हुई है। और कैसी है? बेहोश है लेकिन हंस रही है, बड़ी बड़ी आंखें और कान तक उनकी मुस्कान फैली हुई है, हंस रही है एकदम, खुले आंखें रखे और हिल नहीं रही है कुछ, स्तब्ध हो गई है, स्तंभ जैसे ही। बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ऐसे कैसे अवस्था हो गई, दरवाजा बंद है, सब खिड़कियां बंद है, अंदर कुछ चल रहा है। तो वो ही दोनों तरफ खड़े होकर उसके कान लगाकर सुनते हैं और अपनी कहानी सुनने लगते हैं। और उसमें ना ऐसा वर्णन आया है कि रोहिणी जी जो थी ना, वो बड़े ढंग से कथा कर रही है, बाल रूप की कथा शुरू किया उसने, सिक्वेंशियल पूरा भागवत जैसे, और रासलीला हो गई, सब कुछ कथा चल रही है। तो ऐसे वर्णन आया उसके अंदर कि जिस प्रकार की लीला अंदर सुनाई जा रही थी, उस प्रकार के परिवर्तन कृष्ण बलराम में हो रहे थे। जैसे कथा हो रही है वैसे परिवर्तन अलग अलग हो रहे हैं उनके शरीर के अंदर। आप जो रूप देख रहे हैं ना, वो तो एंड का स्वरूप है, उस रूप तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये शरीर लंबा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर वापस लंबा हो गया, फिर चौड़ा हो गया, फिर आंख बड़ी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर अश्रु आए, विकार, स्तंभ, अश्रु, हाँ, रोमांच, सब प्रकार के विकार कॉम्बिनेशन में हो रहे हैं भगवान के शरीर में, और लास्ट में महाभाव प्रकट हो गया अंतिम, जिसमें वो बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी मुस्कान, पैर अंदर चले गए, हाथ स्तंभित हो गए और गिर गए और ऐसे हंस रहे हैं, वो महाभाव प्रकट हुआ उनका और वो गिर गए, और अंदर किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। सुभद्रा जी के दोनों तरफ गिर गए, और वो जगन्नाथ जी का महाभाव था, जो केवल तीन व्यक्तियों के पास में है, उगम राधा रानी से होता है उसका महाभाव का, और जगन्नाथ जी से श्री कृष्ण है उनको प्राप्त होता है, और राधा कृष्ण का कॉम्बिनेशन जो चैतन्य महाप्रभु है वो उनको प्राप्त है। बस तीन लोगों को ये महाभाव प्राप्त है, बाकी लोग सब देखते हैं उसको। उनके ही बीच में वो महाभाव प्रकट होता है। तो जगन्नाथ जी इस महाभाव को प्राप्त हो गए ना, परम भाव, परम अनंत भाव प्राप्त हो गए, तब ये अधिक परिवर्तन होना समाप्त हो गया और दोनों गिर गए दोनों बाजू में। अरे आप बोलेंगे, अरे तो ये बाहर का सीन है, अंदर क्या हो रहा है, अंदर सब रानियां जना कैसे कथा सुननी चाहिए उसका आदर्श अंदर प्रकट हो रहा है। हाउ टू लिसन टू हरि कथा आइडियली, इतने मग्न है ना वो, उनको ना प्यास ना भूख ना चिंता क्या हो रहा है कुछ भी उनको पता नहीं है। शायद हमारी निहारी का बैठे इसलिए मुझे जगन्नाथ जी का प्रेरणा हो गया बताने का, कुछ प्लान नहीं था मेरा वैसे। हाँ तो बाहर जगन्नाथ जी ऐसे पड़े हुए हैं, अंदर कथा जो है ना एकदम सा क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में क्रिसेंडो, यानी कि ऐसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। सब लोग भाव में विभोर है, अंदर सुन रहे हैं, झूम रहे हैं, सब लोग आंखों से अश्रू आ रहे हैं, वात्सल्य के, प्रेम के, सब प्रकार के भाव अंदर प्रकट हो रहे हैं। और कोई होश नहीं शरीर का कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, बस भगवान की कथा के श्रवण में मग्न हो गए, दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और जब वो भी एकदम चरम सीमा में पहुंचता है ना उनका आनंद, तो अचानक झट से श्री कृष्ण बलराम बालक रूप में प्रकट हो जाते हैं सबके आंखों के सामने। बालक रूप श्री कृष्ण और बलराम जी प्रकट हो जाते हैं, वही छोटी सी कुपिन पहने हुए है और वो कमर कांचनी पहनी हुई है, गले में माला है, मोरपंख पहना हुआ है, ऐसे हाथ में मक्खन है, ऐसे बाल अवस्था में मानो नग्न ही है, थोड़े से ही कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे है, सुंदर लुभावने रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही वो प्रकट हो जाते हैं ना, देवकी भी बैठी उधर, क्योंकि देवकी ने दर्शन नहीं किए थे उनके बाल लीला के, वो तो जन्म हुआ एक स्तनपान कराया और छोड़ दिया उसको, चले गए, उसके बाद में दिखा ही नहीं, उसके बाद जेल में ही रहे, फिर उधर 10 साल नहीं आए वो, उनको भी वो इच्छा थी सुनने की, तो वो भी प्रेक्षक में बैठी हुई है ऑडियंस में। तो कहते हैं कि देवकी के स्तनों से इतना नदिया दूध की बहनी बह वही भाव से कि वो खुद बेहोश हो गई, वात्सल्य भाव का अतिरेक हो गया। देखो आप कितनी तड़प हो सकती है उसके अंदर ना, अरे भगवान को जन्म दिया उसने अपने पेट से, इतने कष्ट में, इतनी पीड़ा सहन करते हुए, 6 बालकों का मृत्यु देखने के बाद भगवान को स्वयं अपने गर्भ से जन्म दिया उसने, और वात्सल्य का केवल एक ही कुछ क्षण को लिए लाभ मिला, बाकी तड़प ही तड़प है उनके लिए, कितना वो वात्सल्य भगवान को देने के लिए तड़पती होगी। और वही रूप प्रकट हो गया उनके आंखों के सामने, इतना वात्सल्य प्रकट हो गया कि दूध की नदियां बही और वो बेहोश हो गई। और आश्चर्य की बात ये हुई कि रुक्मिणी तो उनको पटरानी है, उनको श्रृंगार भाव है उनके मन में, पत्नी का भाव है ना वो, कॉन्जुगल लव, लेकिन रुक्मिणी भी वात्सल्य भाव में एकदम व्याकुल हो गई। उनको लगा कि मुझे भी इसको दूध पिलाना है, मुझे भी इसका मां बनना है, ऐसा भाव प्रकट हो गया। इसको इसको प्रेम वैचित्र कहते हैं। हाँ, प्रेम वैचित्र मतलब क्या, अनबिलीवेबल थिंग ना, अभी जो पत्नी है उसको अपने पति के मां बनने का भाव कैसे पैदा हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। बट दिव्य प्रेम में सब पॉसिबल है, प्रेम वैचित्र, जैसे वो प्रेम सरोवर में सामने सामने बैठे हैं लेकिन विरह का अनुभव करके रो रहे हैं और वो प्रेम सरोवर बन गया उधर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसको शास्त्र में प्रेम वैचित्र कहा गया, वैचित्र यानी कि क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, विचित्रता है एकदम, समझ दे, पैराडॉक्स, बहुत डिफिकल्ट है समझना। तो वो रुक्मिणी को भगवान के 2 बाल स्वरूप को देखकर माता का भाव प्रकट हो गया। तो फिर ये सब लीला समाप्त हो गई। अभी अंदर का सीन देखिए, तो रुक्मिणी ने फिर बहुत भगवान से जिद किया कि मुझे वो आपका स्वरूप जो है ना वो चाहिए। तो उसकी मूर्तियां बनाई गई, वज्रनाभ को विश्वकर्मा, सॉरी वज्रनाभ ने शायद बनाई वो मूर्तियां, और वो रुक्मिणी ने अपने पूरे जीवन में, जीवन भर द्वारका में उसका पूजन किया है। एक तरफ श्री कृष्ण भगवान पति रूप में भी विराजमान है और एक तरफ गर्भगृह में भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जा रही है वात्सल्य भाव में। और बाहर क्या हुआ, भगवान ऐसे पड़े हुए हैं महाभाव के अंदर, तो नारद मुनि जा रहे हैं अपने हर रोज की तरह अपनी यात्रा कर रहे हैं, अचानक देखते हैं इस दिव्य स्वरूप को तो बड़े आकर्षित हो जाते हैं। अभी देखिए नारद मुनि कैसे हैं, नारद मुनि को भगवान के प्रति कितना प्रेम है, प्रेम से भरे भक्त हैं भगवान के, वो प्रेम के वश सब जगह घूमते रहते हैं, इतना प्रेम है भगवान के लिए। तो ऐसा नहीं कि उनको प्रेम का अनुभव नहीं है, सब प्रेम के अनुभव कर चुके हैं वो, लेकिन जब ये प्रेमी भक्त नारद मुनि जब जगन्नाथ जी के स्वरूप को देखते ना, तो उनके मन में ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकट होता है जो पहले कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया था। आपको वैसा अनुभव होता होगा, आप बहुत लोगों को प्रेम करते, लेकिन कैसे कैसे घटना बीच में होती है, आपको एक अद्भुत प्रेम का अनुभव होता है जो पहले कभी नहीं हुआ उसी व्यक्ति के लिए। तो उन्होंने एक अनोखे अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रेम का अनुभव किया जब भगवान को उन्होंने उस रूप में देखा। और बहुत नीचे उतरे, बहुत देर तक उसको निहारते रहे, फिर भगवान को उन्होंने स्पर्श किया, तो भगवान धीरे धीरे वापस अपने पुरानी अवस्था में आ गए, पूर्ववत हो गए, मतलब कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी बन गए। वो अवस्था जो थी महाभाव की, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो नारद मुनि, देखो संत लोग कैसे होते हैं, समझो आपको भी कल भगवान मिल गए तो कितना आनंद होगा आपको, कितना आनंद होगा, कितना होगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे, उसमें कुछ बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन संत लोग है ना, वो भी ऐसा भाव विवर्तता का अनुभव करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं भूलते वो क्या चीज है, जीव का कल्याण। खुद आनंद लेते हुए भी उन लोगों का विचार करते रहेंगे जो दुनिया में तड़प रहे हैं जन्म मृत्यु की श्रृंखला में। तो नारद मुनि ने बहुत विभोरता का आनंद का अनुभव किया, और भगवान ने उनको पूर्ववत दर्शन दिया। तो भगवान ने कहा कि भगवान ये क्या, आपका क्या रहस्य है ये? तो थोड़ा वार्तालाप हुआ, लेकिन नारद मुनि ने तुरंत भगवान से वरदान मांगा, मुझे आप वरदान दीजिए। अभी आपने कितने स्वार्थी है, देखो अभी तुरंत कुछ वरदान मांग रहे हैं। नहीं, भगवान के पास खुद के लिए वरदान नहीं मांग रहे वो, कह रहे मुझे अब भी आप वादा कीजिए कि इसी रूप में आप पृथ्वी पर अवतार लेंगे, इसी रूप में। क्यों? क्योंकि मुझे आपको इस रूप को देखकर ऐसा प्रेम का अनुभव हुआ है, तो मुझे यकीन है कि अगर दुनिया के लोग भी जो जन्म मृत्यु के श्रृंखला में भौतिक भोगों को लेते हुए प्रयास करते हुए तड़प रहे हैं दुनिया में, वो भी अगर आपको केवल देखेंगे ना, तो अभी आपको भी उनको भी ऐसी प्रेम की अनुभूति हो सकती है अपने आप स्वतः। तो क्यों नहीं आप ऐसे आ जाते हैं, प्लीज आइए। तो नारद मुनि की करुणा को देखते भगवान ने उनको वादा कर दिया कि मैं आए, हम आएंगे। और फिर नारद मुनि के उस वचन को निभाने के लिए फिर जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध में जब नील माधव अंतर्धान हो गए, तो जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी प्रकट हुए, ये एक भक्त की करुणा का परिणाम है। अगर नारद मुनि ने खुद अपने आनंद का प्रेम का अनुभव करके चले गए होते और ये बात नहीं कही होती, तो जगन्नाथ जी आप नहीं होते आज। इसलिए संत का जीवन में होना बहुत जरूरी है, हमारे संत का हमारा संपर्क होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संत जब होते हैं ना, तो वो 100% परोपकारी होते हैं। उनकी सांस, उनकी धड़कन, उनकी हर रोम रोम जो है ना, वो केवल परोपकार के लिए होता है। वो किसी भी कार्य को खुद के लिए नहीं करते हैं। एक चरम सीमा है एक तरफ की, वो हम लोग एक तरफ है, हम लोग हर कार्य खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं, और वो कोई भी कार्य जो है वो परम कल्याण के लिए, लोगों के लिए करते हैं। ओनली वेलफेयर ऑफ अदर्स, दैट्स ऑल। इसलिए ये सारे विग्रह प्रकट हैं। देखो उडुपी में कृष्ण भगवान के विग्रह प्रकट क्यों हैं, देवकी रुक्मिणी और रोहिणी की कृपा है, वो उन्होंने लीला किया इसलिए वो प्रकट हो गए, और वो आके वहां पर आज विराजमान है। वो भी बता देंगे आपको, भी वो प्रसंग निकला है तो बता देंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक भक्त संत जो है ना, उसका इस जीवन में होते हुए संपर्क होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कितने भी अच्छे इंसान होंगे ना, फिर भी स्वर्ग नरक घूमते ही रहेंगे ऐसे, या तो स्वर्ग में और पृथ्वी में ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहेंगे, अच्छा जीवन जीते रहेंगे, सो कॉल्ड नाइस लाइफ, बट यहां से मुक्त नहीं होंगे, यही घूमते रहेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे अच्छी खुशबू वाले जगह में घूमते रहेंगे, कुछ बदबू वाले जगह में घूमेंगे, लेकिन घूम रहे हैं भौतिक जगत में ही, वैसे होगा वो। केवल अच्छा होना कुछ ज्यादा कीमती चीज नहीं है। तो बार बार जगन्नाथ का दर्शन करते हुए नारद मुनि का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि आपने उस परम आनंद के स्थिति में भी हमको नहीं भूले, आप हमारी याद रखी, और भगवान भी राजी हो गए। वो तो परम दयालु भगवान है, परम करुणामय सागर है वो, पर करुणा के आप भी कम नहीं, वो भी कम नहीं, दोनों का परिणाम यह है कि आप खड़े हैं उधर जगन्नाथपुरी में, दर्शन दे रहे हैं सबको। उनको देखने मात्र से ही प्रेम प्राप्ति होती है। दो चीजें उनके जीव उनके प्रति बहुत महत्वपूर्ण है, एक है उनको देखना, एक है उनका प्रसाद खाना। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बहुत आसान है, ज्यादा तपस्या नहीं है उसके अंदर। खाने में तपस्या होती है क्या किसी को? खाने में तो आनंद ही आता है, उसमें क्या तपस्या है? जाने के लिए थोड़ा तकलीफ हो सकती है, यहां से वहां जाना है, बहुत दूर है वगैरह, लेकिन वहां जाने के बाद ज्यादा कुछ करना नहीं है, खाली उनको देखना है बस। वो आपको देखेंगे, आप उनको देखो, बस दैट्स इट। एक बार भी अगर आप जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ का दर्शन करते हो तो कहते हैं दोबारा जन्म नहीं होगा आपका दुनिया में, लेकिन वो दर्शन कैसा करते हो उस पर डिपेंड है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ वहाँ देखते रहोगे इधर उधर। हाँ, जगन्नाथ जी को निहारना है आपको, जगन्नाथ जी को आंखों का सर्वस्व बनाना है, नेत्र दीपक बनाना है, नेत्र का दीपक बनाना है, सारा आपका अस्तित्व चेतना भावना उनके दर्शन में आपको अर्पण करना है। उसको उसको निहारना कहते हैं। आपका नाम निहारिका है, उसका मतलब क्या है? वो निहारने में बहुत एक्सपर्ट है भगवान को। आपको पता नहीं है वो जगन्नाथ जी के जो सेवक है उनकी पुत्री है, वो रामकुमार जी पंडा जी की दैत्यपति की कन्या है, वो हमारे पास रह रही इधर हॉस्टल में, भाग्य है हमारा बहुत। तो इस बार हम जगन्नाथपुरी यात्रा में जाएंगे, तो फिर अभी जगन्नाथ जी तो आ गए द्वितीय परार्ध में, बड़ी लंबी कथा है उनकी। और यहां पर क्या हुआ कि अपने जीवन भर कृष्ण बलराम के दो विग्रहों का रुक्मिणी ने सेवा किया। यथावकाश आप जानते हैं भागवत में वर्णन आता है, भगवान वो कैसे लुप्त हो गए द्वारका, है ना? पहले यादव वंश का नाश हो गया, संतों का अपमान किया उन्होंने, शाप प्राप्त हुआ, तो प्रभास क्षेत्र चले गए और अपने आप में झगड़ा किया और मर गए सब लोग। परम वीर लोग सब समाप्त हो गए अपने आप झगड़ा करने में, है ना? भक्त लोगों को कोई मार नहीं सकता है, सिवाय एक दूसरे के अलावा उनको कोई मार नहीं सकता है। बाहर का आदमी भक्तों को नहीं मार सकता है, उनको कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो बाहर का आदमी। एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे ना तो ही आप नष्ट हो सकते हो, इसलिए भक्तों का समुदाय का एकता बहुत जरूरी है। भक्तों को कोई बाहर का फोर्स नष्ट नहीं कर सकता, अंदर का फोर्स नष्ट कर सकता है। ये यादव की लीला का सबसे बड़ा सीख यही है। तो वो नष्ट हो गए, इतना बड़ा एक अक्षौहिणी वंश था उनका, वो सब खत्म हो गया, समाप्त हो गए, पूरी धराशायी हो गए। और फिर भगवान ने भी लीला करके भगवान भी चले गए। वो भृगु ऋषि थे ना, भृगु ऋषि, वो एक बार भगवान को नापने के लिए गए थे कि कौन परम भगवान है, तो उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात मार दिया था। तो भगवान ने कहा था कि आपको चोट तो नहीं आई ना छाती पैर को? मेरी छाती वज्र की है ना, अभी वज्र की छाती है, अभी आपके इधर कमल चरण कमल ब्राह्मण के अभी दुख कष्ट तो नहीं हुआ ना आपको, ऐसे भगवान बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी ऐसे नहीं बोल रही है। लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आ गया कि मेरे पति को लात मारा, और वो भगवान ने क्या किया, वो चरण कमल का जहां है ना वो संभाल के रखा छाती पे कि मेरा अलंकार है ये मेरा अलंकार है कि मेरे भक्ति के चरण कमल मेरे छाती पर विराजमान है। तो उन्होंने उसको अलंकार के रूप में संभाला, लेकिन लक्ष्मी ने शाप दिया उसको कि तू जाके शूद्र बन जाएगा, फांसे पारदी बन जाएगा, जानवरों को मारने वाला शिकारी बन जाएगा, एकदम भिल्ल होते ना ऐसे, एकदम एबोरिजिन्स जैसे बन जाएगा। तो वो पारदी बन गया, लेकिन भक्त तो था ना भगवान का पहले से ही, भृगु मुनि तो बड़े भक्त के भक्त थे, और भगवान उससे नाराज नहीं हुए थे। लक्ष्मी का नाराज होना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि पत्नी है वो, पति का अपमान एक तरह से हो रहा है तो उसको कष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन जिनको वो लात्ता प्रहार किया गया उनको उसका अपराध नहीं हुआ, वो तो बड़े प्रसन्न थे उनके ऊपर, बिल्डू पूछ रहे हैं कि दर्द तो नहीं हुआ। तो वो जो है वो फांसे पारदी बनकर वहां पर आया, भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे पैर ऊपर करके, उसको लगा हिरन है या कुछ मोर ऐसा कुछ लगा उसको, तो बाण मार दिया, और वो पता चला कह रही वो भगवान के पैर को बाण मार दिया उसने। शास्त्र में लिखा है कि वो बाण उनको स्पर्श नहीं किया, बाण केवल अंगूठे के पास खड़ा हो गया आके। लेकिन दुनियादारी जो है ना, लोगों की जो भौतिक भावनाएं हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि भगवान को भी बाण मार दिया, भगवान भी हमारे जैसे, उसको बाण लगा मर गए, हम भी मर सकते हैं वैसे, वो भी मर गए। और भगवान भी बड़े बड़े दिव्य हैं, उन्होंने क्या क्या बताया, दिव्य शरीर से वैकुंठ चले गए वो, और एक शरीर छोड़ दिया वहां पर जिसका लोगों ने दाह संस्कार किया, सब कुछ किया जैसा हमारा किया जाता है। क्यों किया ऐसे भगवान ने? जो लोग उन पर विश्वास नहीं रखते हैं उनको सामान्य व्यक्ति समझते हैं, हाँ वो क्या कहते हैं उसको, चालू समझते हैं बहुत, है ना, कालू बहुत चालू। क्योंकि भगवान ने कैसे ही काम किए, बहुत सारी लीला ऐसे की है, तो वो भगवान को समान समझते हैं। मनुष्य क्या बोलते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य बन के आता हूं तो लोग मुझे ऑर्डिनरी समझते हैं, अपराध करते हैं मेरे ऊपर, क्या क्या करते हैं। उनके लिए अपने ऐसा भेष छोड़ दिया उधर, एक ऐसा माया का जाल छोड़ दिया कि उनको भी विश्वास हो कि ये तो सामान्य व्यक्ति ही था, बड़ा होशियार था लेकिन था सामान्य ही, मर गया एक दिन ऐसे। दाह संस्कार भी किया, सब कुछ उधर बनाया उनका मेमोरियल बहकाने के लिए बनाया, लेकिन जो संतगण है वो भ्रमित नहीं हुए, वो मालूम है भगवान लीला कर रहे हैं। तो भगवान क्या किया, भगवान ने खुद जाने के पहले ही उद्धव जी को, परीक्षित महाराज को और वज्रनाभ को, तीनों को बुलाया और उनसे मीटिंग किया, समझाया कि ऐसे ऐसे अभी होने वाला है, मैं जा रहा हूं। अब भागवत पढ़ेंगे ना, अभी 11वां स्कंध पढ़ेंगे तो उद्धव जी को, उद्धव जी का प्रसंग आता है उसके अंदर, उद्धव जी रो रहे हैं भगवान के साथ कि मैं समझ रहा हूँ कि आप जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो चल रहा है ना, ये यादवों का नाश हुआ जो भी, मैं समझ रहा हूँ कि आप जाने का प्लानिंग कर रहे हो। भक्त बहुत होशियार होते हैं क्योंकि उनकी चेतना बहुत शुद्ध होती है, मन भी बहुत शुद्ध होता है, उनको ना सब अनुभूतियाँ अंदर होने लगती है अपने आप ही, रियलाइजेशन साक्षात्कार अपने आप ही होता है। उद्धव जी ऐसे महान भक्त थे, इसलिए उनको केवल प्रसंगों को देखते हुए ऐसा अनुभूति हुआ कि अभी शायद मेरे प्रिय भगवान ये दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं। तो भाग के भगवान के पास आए, बोले मैं समझ रहा हूं कि आप जा रहे हैं और प्लीज मुझे आप लेके जाइए, मैं यहां आपके बिना नहीं रह सकता। और कहते हैं उसी समय भगवान ने उद्धव जी के इस दुख और विरह को देखते हुए अपने आप को श्रीमद् भागवत में अर्पण कर दिया तुरंत ही, कि मैं गया और श्रीमद् भागवत आया, ऐसे भगवान ने व्यवस्था कर दिया। उद्धव जी की कृपा है वो, उद्धव जी का भाव देखकर भगवान ने तुरंत भागवत रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया, मतलब अपने आप को भागवत में लीन कर दिया, अर्पण कर दिया। और फिर उनको बता दिया कि उद्धव जी को बहुत समझाया उन्होंने, आप भागवत पढ़िए, बहुत सुंदर उद्धव का उपदेश भगवान ने, कैसे उद्धव जी को सांत्वना दिया है, उपदेश दिया है, सेवा दिया है कि आप रहिए, आपको सेवा है आगे जाकर। हाँ, तो उनको बताया कि अब मेरी पत्नियों को कहाँ ले जाना है, वो रोएंगी बहुत, तो उद्धव जी ऑलरेडी वृंदावन चले गए, वहाँ पर तृण का पत्ता बन गए वो तपस्या करके, और वज्रनाभ को और परीक्षित राजा को बताया कि उनको ना आप लग के वृंदावन जाना है, उनका आगे का उद्धार कल्याण जो है वो वृंदावन में होगा, आपको केवल मैं जाने के बाद में उनको निकालना है वहाँ से। और ये भी बताया कि जब मैं जाऊँगा ना उसके पहले ही उनको आपको बाहर निकालना है, क्योंकि तुरंत ही द्वारका पर समुद्र आक्रमण होगा और द्वारका नष्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी मेरे इच्छा से, समुद्र की ऐसी हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा से समुद्र जो है द्वारका पूरा ढक लेगी पूरी, उसके पहले आपको उनको निकालना है। तो 7 दिन का ऐसा समय दिया था उन्होंने कि 7 दिन के बाद, मैं जाने के बाद द्वारका जल व्याप्त हो जाएगी, तो वो भगवान अंतर्धान हो गए और उनका बाकी लोगों ने क्रिया कर्म किया, और उसके तुरंत बाद उद्धव जी सॉरी परीक्षित महाराज और वज्रनाभ जी उनको, पत्नियों को रोते रोते हुए लेकर वृंदावन चले गए। तो मुझे याद करना, मैं उडपी की कथा बताऊंगा आपको, भूल सकता हूं मैं, लेकिन जब पत्नियां रोते रोते निकली ना, निकाल दिया गया उनको, वज्रनाभ जी उनको ले गए और सीधे वृंदावन चले गए, तो वो जमुना जी जहां पर उछल रही है पूरे आनंद से एकदम, वो भी भगवान के पत्नियों की सौतन है ना, चौथे नंबर की पत्नी वो भी खुद है, एक ब्रजवासिनी पत्नी है उनकी, वो तो आनंद से उसके जल में इतनी लहरें आ रही है, तो सब पत्नियां रो रही है, वो कह रही है यमुना जी आप तो हमारे सौतन हैं, आपको भी दुख होना चाहिए, हम रो रहे हैं आप कैसे उछल रही हैं। वो कहते हैं जो राधा रानी से संबंधित है उनको कोई दुख नहीं छूता है, और आगे आपको समझना है इसका रहस्य क्या है, तो राधा रानी को जाके मिलिए आप। लेकिन उनको कहा गया था कि उनको उद्धव जी के पास लेके जाना है, उन्होंने भी ये गाइड किया कि आप उद्धव जी के पास जाके रहस्य को समझिए कि राधा रानी का संपर्क होने पर जिसका है उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, उसके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, इसलिए हमें भी दुख है लेकिन दुख नहीं भी है, इसलिए हम उछल रहे हैं। तो वो सब रानियां पहुंचती है कुसुम सरोवर, यहाँ पर भगवान राधा रानी के लिए बालों का श्रृंगार करते हैं फूलों का, इसके किनारे में बैठकर वेणुगूथन लीला करते हैं। तो वहां पर गए वो रानियां सब, उन्होंने कीर्तन किया, नाम संकीर्तन किया। आप सोच सकते हैं भगवान की रानियों का नाम संकीर्तन कैसे होगा, एक तो भगवान की पत्नी आए, वो इतना प्रेम करती है भगवान से, और वो भगवान को वियोग में पुकार रहे हैं नाम से, तो कैसे कीर्तन किया होगा उन्होंने, जो नाम संकीर्तन के वहां महात्म्य है कि उन्होंने नाम संकीर्तन किया और उस नाम संकीर्तन के प्रभाव से उद्धव जी तृण के पत्ते के रूप में से व्यक्ति रूप में प्रकट हो गए। वो तृण के पत्ते के रूप में वहां विराजमान है, क्योंकि उनको गोपियों के चरणों की रज चाहिए, इसलिए उन्होंने तपस्या किया था कि मैं तृण का पत्ता बन जाऊं तो गोपियां आराम से चलेंगी बिना संकोच, तो मुझे उनकी कृपा मिलेगी, इसलिए वो तृण का पत्ते बनकर वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन भगवान की इच्छा को समझते हुए ये नाम संकीर्तन सुनकर प्रकट हो जाते हैं, और फिर भगवान के पत्नियों ने वहां बैठकर उद्धव जी के मुख से 30 दिन तक भागवत की कथा सुनी है। 30 डेज, 7 दिन तो सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, लेकिन भगवान के रानियों के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं थी। उद्धव जी ने वहां पर उनको 30 दिन कुसुम सरोवर किनारे बैठकर भागवत सुनाया है, और वो रोते रोते आ रही है द्वारका से, रोते रोते बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है रोना उनका, सहन ही नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत का पहला शब्द, श्लोक भी नहीं, पहला श्लोक श्लोक का पहला शब्द उच्चारण किया, तो उनका दुख तुरंत नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण है, स्वयं श्रीमद् भागवत का हर एक शब्द कृष्ण है, तो जैसे उसका उच्चारण किया ध्वनि रूप में, तुरंत श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव हुआ। They experienced the personal presence of the Lord. इसलिए जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं, उनका होने का अनुभव किया तो रोना बंद, आनंद, उसके बाद में 30 दिन आनंद का ही अनुभव किया उन्होंने। ये प्रमाण है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत है, और हमको भी पढ़ते समय उसी भाव से पढ़ना चाहिए कि साक्षात श्री कृष्ण से हम संग कर रहे हैं, भले वो भक्त चरित्र हो, ध्रुव चरित्र हो, प्रहलाद चरित्र हो, कुंती चरित्र हो, हाँ कोई भी चरित्र हो, या तो उनका चरित्र हो खुद का, लेकिन सारे चरित्रों का जब श्रवण कर रहे हैं साक्षात कृष्ण का सानिध्य आप कर रहे हैं। वो 30 दिन के कथा में जब दशम स्कंध का वर्णन हुआ तो उनकी कथा आई ना उसमें, रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ, सत्यभामा का कैसे हुआ, जम्बुवेदी का कैसे हुआ, तो सब वहां बैठे हुए हैं, 16,100 का कैसे हुआ, लक्ष्मणा का कैसे हुआ, सत्या का कैसे हुआ, मित्रविंदा का कैसे हुआ, यमुना का कैसे हुआ, सब वर्णन आया उसके अंदर। तो उन्होंने खुद को देखा, खुद के दर्शन किए उन्होंने इस लीला में, और 12वां स्कंध के पश्चात वो अपने उस स्वरूप में विलीन हो गए, एक रूप होकर वो लोग धाम चले गए, भगवत धाम चले गए, जहां जहां उनका स्थान था वहां चले गए सब लोग। तो श्रीमद् भागवत का क्या परिणाम है? श्रीमद् भागवत आपको भी भगवत धाम पहुंचा सकता है, अगर आप वैसे सुनेंगे जैसे परीक्षित महाराज ने सुना था, भगवान की रानियों ने सुना था, पार्वती जी ने सुना था, सुखदेव जी ने सुना था व्यासदेव के मुख से, परीक्षित ने सुखदेव के मुख से सुना था, पार्वती ने शिवजी के मुख से सुना था, व्यासदेव के मुख से उनकी पत्नी ने सुना था, वैसे एका शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी से सुना था, वैसे भाव से हम सुनेंगे उसको, उसके महात्म्य को समझते हुए, तो वही भागवत आपको भी गौलोक धाम पहुंचा सकता है। उसमें एकाग्रता और उसमें श्रद्धा, एकाग्रता और विषयहीनता होनी चाहिए। विषयहीनता मतलब भौतिक भोग का लालसा मन में नहीं होनी चाहिए, निरपेक्ष होकर श्रवण करना चाहिए उसका। तो ये हुई रानियों की कथा। तो बीच में क्या हुआ, समुद्र ने व्याप्त कर लिया द्वारका को, है ना, व्याप्त कर लिया, तो फिर क्या हुआ ना, भगवान की ऐसी लीला है, देखो ये दोनों जो मूर्तियां थी ना कृष्ण बलराम की, वो गोपी चंदन में आवृत्त हो गई अपने आप भगवान की इच्छा से, लिपट गई, गोपी चंदन ने उनको लिपट लिया, और दो बड़े ऐसे वस्तुएं बन गई बड़ी, जैसे कि गोपी चंदन के ही पत्थर बने ऐसे, उसके अंदर भगवान है, और वो तो समुद्र के नीचे थे, लेकिन काफी समय तक नीचे रहे समुद्र के, यानी कि द्वारका में रहे, अभी पानी ऊपर आ गया है। और यथावकाश कलयुग के 700 साल होने के बाद में वो द्वारका के किनारे पे आके रह गए। कैसे आए मुझे मत पूछना, मुझे नहीं पता है। जो समुद्र के नीचे थे, और आप लोग जब चंदन लगते हो पानी में क्या होता है, पिघल जाता है ना, वो नहीं पिघला, वैसे ही रहा वो। 700 वर्ष के बाद में यहाँ पर 700 या 9 जो भी है उनका जन्म काल मध्वाचार्य का, उनका जन्म हुआ 12वीं सदी में हुआ, 12th सेंचुरी में। तो जब वो बड़े उम्र के हो गए, मतलब जवान हो गए, हनुमान जी के भाई हैं, वो वायु पुत्र हैं। तो वो उधर उडुपी के किनारे में एक भजन कर रहे हैं अपना, बैठ के अपने शिष्यों के साथ, कुछ 35 साल शिष्य थे उनके साथ में। वहां द्वारका में एक व्यापारी निकला, हाँ, और उसके पास बहुत धन था, वो बेचने का था। तो समुद्र मार्ग से वो, तो द्वारका ऊपर थी, वो उडुपी नीचे है, वो नीचे दक्षिण भारत की ओर, समुद्र की ओर से आ रहा है। लेकिन जब निकला वहां से, तो उन्होंने क्या किया, वो दो ऐसे वो जो मिले उनको बड़े पत्थर जैसे चंदन के, उसको अपने बोट पर बैलेंस के रख दिया, बोट स्थिर हो जाए इसलिए प्रवास स्थिर से करें। और जैसे वो दो उडुपी के पास में आया ना, तो उसका जहाज तूफान में फंस गया, बहुत जोरदार तूफान में फंस गया। और वो चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, बचाओ बचाओ। तो मध्वाचार्य को प्रेरणा हुई कि कुछ दिव्य बातें हो रही है, देख रहा है कि अरे जहाज नदी में, हाँ, समुद्र में गोल गोल घूम रहा है। तो वायुपुत्र थे ना वो, उन्होंने ऐसा उत्तरीय वस्त्र निकाला अपना और ऐसे घुमाया ऐसे, और वायु को ऐसे प्रवाहित किया कि जैसे उसको खींच लिया उन्होंने ऐसे। वो बहुत दिव्य हस्ती थी वो, मध्वाचार्य, वासुदेव मध्वाचार्य। तो वो जहाज जो है उनके हवा के प्रभाव से, हवा वायु के प्रभाव से किनारे आ गया। तो वो जो ओनर था उसका, वो दौड़ के आके चरणों में गिर गया, अरे महाराज जी आपने इतनी बड़ी कृपा की, आप धन्य हो, आपने मुझे बचाया, आप ले लो सब, ये तो तब गया ही था सामान सब, आप क्या चाहिए बताओ, आप ले लो उसको। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो दो चंदन के पत्थर चाहिए। उनको कुछ अनुभूति हो रही थी इसमें कुछ है, तो हाँ ठीक है जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन और भी लीजिए, नहीं नहीं मुझे वही कहीं चाहिए। तो वो सब शिष्य गए उनके उठाने के लिए, 35 शिष्यों से एक भी पत्थर उठ नहीं गया। फिर ये गए, नहीं एक हाथ में एक लिया, दूसरे हाथ में दूसरे लिया, चलने लगे। वायु पुत्र है ना वो मध्वाचार्य, बहुत शक्तिशाली है, कई चमत्कार है उनके। तो वो जब उन्होंने उठाया और वो जा रहे थे अपने, उधर से कुछ 5-6-10 किलोमीटर तक उनका उडुपी क्षेत्र है जहां पर वो रहते थे, उनका जन्म स्थान थोड़ा उसके आगे है, वहां पर उनकी कृपा से गंगा जी प्रकट हुई है। एनीवेज, तो जब वो चल रहे थे तो उधर ही समुद्र किनारे ही एक उनके हाथ से ऐसे भगवान की इच्छा से गिर गया और वो दो हो गए, चंदन बाजू में हो गया और बलराम जी की मूर्ति प्रकट हो गई, और उनसे बोले कि मुझे यहीं स्थापन करो समुद्र किनारे। तो उनको उन्होंने वहां स्थापन किया, समुद्र किनारे ही उनका स्थापना किया गया, उसका नाम है वडबांडेश्वर, आज भी है वो, मलपे, मलपे ना, मलपे मलपे बीच पे, बहुत सुंदर मंदिर है। फिर दूसरा जो चंदन का बड़ा पत्थर था शिला, उसको लेकर वो उडुपी क्षेत्र गए, और वहां पर उन्होंने अपने उसमें उसको डाला, वो गंगा जी जहाँ प्रकट हुई थी। हाँ थोड़ा बता देता हूँ उसका, गंगा जी कैसे प्रकट हो गई। वो जब बच्चे थे छोटे से मध्वाचार्य, तो उनके गुरु की आज्ञा लेकर वो बद्रीनाथ गए, जाने लगे, तो उनके गुरु को उनका विरह सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना किया कि आप में स्नान करने के लिए जा रहे हो, मैं नहीं रह सकता उतना दिन तक उनके बिना, आप कुछ कीजिए। तो गंगा जी उधर तुरंत प्रकट हो गई, वो गंगा जी का एक कुंड है वहां पर, उसका दिन है, उस तिथि में वो प्रकट हुई थी, उधर भी आज भी बाढ़ आती है उसको उस दिन। तो वो जो तालाब है वो गंगा जी स्वयं है, उसमें उन्होंने उसको डाला, तो वो चंदन पिघल कर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई, और वही मूर्ति उडुपी कृष्ण मठ में आज विराजमान है। वो रुक्मिणी द्वारा पूजित भगवान का बाल स्वरूप है, एक हाथ में मथनी है, एक हाथ में मक्खन है, दोरी पकड़ के खड़े हैं, बहुत सुंदर, बहुत लुभावना स्वरूप है उनका। तो ऐसे उडुपी कृष्ण प्रकट हो गए। तो एक लीला में भगवान क्या क्या करते हैं देखो आप, किधर किधर क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए भगवान की लीला जो है ना, वो श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान लीला करते क्यों हैं, उनको क्या जरूरत है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर उनको हिरण्यकश्यप को मारना था तो इतना कष्ट करने की जरूरत क्या है, आप गए थे ना उत्तरा के गर्भ में, गए थे ना, इतना सा रूप पकड़ के, इतना अंगुली मात्र रूप पकड़ के बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया उन्होंने, वहां पर उतने नन्हे रूप में अपनी नन्ही गदा घुमा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया था उन्होंने अंदर ही अंदर। तो इतना खंभा फाड़ के आए ना, वो इतना बड़ा रूप धारण करना, आदम आदमी आदम सिंह, और ये इतना अकराड़ विकराड़ चिल्लाना, गर्जना करना, सबको डराना, नाखून लेके आना, हाथ हाथ में हाथ अस्त्र, उसको नहीं यूज करना, और दो हाथ के नाखून से सब कुछ करना। इतना बड़ा चैप्टर भर के रखा है भागवत में, इतना बड़ा पेज भर के रखे, उसके जरूरत नहीं उनको करने की। वैसे ही रूप धारण करके हार्ट में चले जाते, जैसे वो गर्भ में चले गए थे वो हार्ट में चले जाते, वहां से अपने चक्र से एक उसकी धमनी काट देते, मेन एवोर्टा। तो लोग बोलेंगे अभी तो अच्छा था हिरण्यकशिपु, अच्छा हंसता बोलता था, अचानक गिर को गया वो इंटरनल ब्लीडिंग है ना, अंदर ही, बाहर कुछ घाव दिखने रहे, अंदर के अंदर ही पूरा ब्लीडिंग होके खत्म हो गया वो। तो इतना बड़ा पेट फाड़ने का, उसका वो हार्ट निकाल के फेंकने का, उसके बाद आंतरी का माला पहनने का, इतना सब काम करने की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि अगर वो वैसा करते तो हम लोग उसको था को दो मिनट में खत्म करते, लेकिन इतना बड़ा विस्तार किया ना उसका, इसलिए हम लोग उसको बड़ा विस्तार से उसका वर्णन कर सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं ना। बताने के लिए, सुनने के लिए, सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए बहुत बड़ा विषय बनाया उन्होंने। ये भी सब ऐसा ही है, उनको कोई जरूरत नहीं आने की, लेकिन हमारे और आपके कल्याण के हेतु वो सब कुछ यहाँ आ आके लीला करते रहते हैं, ताकि हम लोग उनकी लीला का श्रवण करके दोबारा उनकी ओर आकर्षित हो जाए और दोबारा यहाँ का आप दिल छोड़कर वहां पर दिल लगाए उनके ऊपर और उनके पास चले जाएं, इसलिए सब कुछ करते हैं वो। तो अगर वो इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए इधर नीचे आके हमारा उद्धार के लिए, तो हमको रिस्पॉन्स देना चाहिए ना उनको, सुनकर कि नहीं देना चाहिए? हाँ भाई, आपकी मर्जी, आप करते रहो, हमको क्यों बॉदर करते हो मैं अपना काम करूँ, आप अपना काम करो, ऐसे नहीं है वो। भगवान करुणावश लीला करते हैं, बद्ध जीव के करुणावश लीला करते हैं। आप अनुभव कीजिए, अगर आपको जीवन में कष्ट है तत्काल आप भगवत लीला को पढ़िए, तत्काल भगवत लीला को सुनिए, सारे कष्ट मिट जाएंगे आपके, गारंटी इस बात की। आप करके तो दुखी, लेकिन जब बहुत कष्ट आते ना तो हम वो कष्ट के बारे में चर्चा करते रहते हैं, अरे इसको बताया, उसको बताया, फोन पे बताया, इसको बताया, डिस्कस करते रहते हैं, वो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसी में चिंतन करते रहते हैं, लेकिन उसके बाहर निकलकर भगवत कथा का आश्रय लेते नहीं हम लोग। तुरंत माला उठाकर जप नहीं करते हैं, तुरंत माला उठाकर कीर्तन उठाकर कीर्तन नहीं करते हैं, तुरंत भगवान के सामने जाकर प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए हमारा दुख वैसे ही रहता है। आप यकीन कीजिए इस बात का और कोशिश कीजिए, अगली बार जब पहला कष्ट होगा तुरंत भागवत खोलिए और कथा पढ़िए भगवान की, या भागवत कथा पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है, मन में वही आ रहा है, सुनिए कथा, किसी ने बताया हुआ, देखो आप तुरंत आप सारे दुख से कष्ट हो, जैसे भगवान की रानियां तुरंत दुख से मुक्त हो गई, वैसे आप भी तुरंत दुख से मुक्त हो जाएंगे। और एक बार आपको ऐसा अनुभव हुआ ना कि दुख हुआ, मैंने सुना, दुख खत्म हो गया, फिर बार बार आप वो करते रहेंगे, फिर आप आनंद में ही रहेंगे, फिर दुख होगा नहीं आपको। पैनेशिया क्योर है वो, श्रीमद भागवत हरि कथा जो है ना वो सर्व औषधि है, वो किसी भी आपके दुख पर आपको दुख निवारण की औषधि है। और क्योंकि भगवान भी स्वयं प्रकट होते हैं, मैंने सब बताया ना आपको, तीर्थ प्रकट होते हैं, नदियां होती है, 18 पुराण होते हैं, संत होते हैं, सब प्रकट होते हैं, भगवान भी स्वयं प्रकट होते हैं अपनी कथा सुनने के लिए। इसलिए मैंने आपको उडुपी की कथा बताई, द्वारका वाली, कि कैसे भगवान अपनी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, तो भगवान को भी आकर्षित करने के लिए उनकी कथा ही एक माध्यम है जो आपके लिए अवेलेबल है, उनको खींचने का की उन्होंने आपको दे के रखा है, आप कभी इस्तेमाल ही कर देने, आपकी की खो गई है, चाबी खो गई आपकी, मिलती नहीं आपको कोई, तो कैसे आएंगे वो, आपको उन्होंने देके रखा है वो चाबी, जब चाहे चाहे को इस्तेमाल करके आप उनको खींच सकते हो, लेकिन खींचना चाहिए। इस जीवन में अगर हम लोग हरि कथा में रममाण होते हैं तो ना आपको इस जीवन में जीते हुए दुख होगा और जाने के समय तुरंत भगवत धाम चले जाएंगे आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपको हम प्रभु राम के जन्म की कथा सुनाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म स नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान ने हमको उनकी प्राप्ति कराने का मार्ग इतना आसान कर दिया है। वो कहते हैं कि मेरा जन्म यानी मेरा अवतरण, वो मेरा यहाँ का कार्य, अलग अलग रूप में जो कार्य करता हूँ, उसकी दिव्यता को आप समझेंगे तो आप मुझे प्राप्त कर लोगे, दोबारा दुनिया में नहीं आओगे, जब अंतकाल होगा आप मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। दिव्यता का मतलब क्या है कि वो कहानी ऑर्डिनरी कहानी नहीं है, जैसे हमारी कहानी होती है कि हमने प्रेम किया, शादी किया, भाग गए, ये किया, वो किया, हमारी भी एक कहानी है, सबकी कहानी है, हर एक की एक जीवन की कहानी होती है। लेकिन वो कहानी दिव्य नहीं होती है, वो कहानी सुनेंगे तो नरक में जाएंगे आप, क्योंकि उसमें कोई दिव्यता भगवान का संबंध नहीं है, अरे अपने कर्मों की कथा है वो। हमारा जीवन सदा पापे रहता, ना ही को पुण्य रलेशा, परे रे उद्वेगा। दूसरों को कष्ट दिया है मैंने, पाप से भर गया हूं मैं, मेरा जीवन जो है क्या बताएं, ये सुनकर किसी को प्रेरणा नहीं मिलती है। ऑफकोर्स वो भक्ति विनोद जी गा रहे हैं, वो नम्रता से गा रहे हैं, इसलिए हमको उसको सुनना चाहिए। वो हमारे सत्य को याद दिला रहे हैं, हमारा जीवन का सत्य क्या है, खुद के बारे में बोलकर आपको याद दिला रहे हैं कि ये आपके जीवन का सत्य है, बाय द वे। हम उसको उस तरह सुनते हैं। लेकिन भगवान की कथा जो है वो आपको त्रिगुणा के परे पहुंचाने वाली है, केवल श्रवण मात्र से, उसमें कोई भौतिक लवलेश नहीं है, कोई त्रिगुणों का लवलेश नहीं है उसके अंदर, वो दिव्य यानी त्रिगुणातीत उसका स्थिति है। और वो आकर आप समझेंगे, अरे भगवान ने जन्म लिया, अरे तो मेरे जैसा ही है, उसमें क्या डिफरेंस है उसके अंदर, ऐसा लगेगा, तो फिर वो दिव्यता खत्म। और आपको समझेगा कि हाँ, मेरे जन्म में उनके जन्म में अंतर है, हम तो ऐसे तरह से आते हैं, वो तो प्रकट हो जाते हैं, हम तो रोते हुए आते हैं, वो तो हंसते हुए पूरे श्रृंगार के साथ में आते हैं। ये सब समझेंगे उसकी दिव्यता को, वो दिव्यता को समझने से ही हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। जन्म चर्म चमे दिव्यम वेत्ति, यानी जिसको समझ में आता है, एवं यो वेत्ति तत्वता एज इट इज, जिसको ये समझ में आता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न न इति मामेति अर्जुन, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। तो ये जन्म बार बार सुनते हैं भगवान का, क्योंकि वो सुनने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो बड़ी सुंदर कथा वाल्मीकि रामायण में है, देखते हैं कितना समय चलती है वो। तो दशरथ महाराज को पुत्र नहीं था, रामायण में वर्णन आता है कि इतना सुंदर साम्राज्य था उनका, ऐसा साम्राज्य था, ऐसी प्रजा थी कि प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे वो, कभी भी एनी टाइम त्याग करने को तैयार है। ऐसा हो सकता है क्या आज के जमाने में? किसी को राजा पर प्रेम नहीं, राजा को किसी पर प्रेम नहीं है। लेकिन दशरथ महाराज इतने दिव्य थे कि उनको ऐसी प्रजा प्राप्त थी। और दशरथ महाराज के पास 3 प्रधान पत्नियां थी, लेकिन जब परशुराम ने हमला किया ना, परशुराम भगवान ने, कहते हैं उन्होंने 21 बार पृथ्वी का परिक्रमा किया, वो क्षत्रियों को मारते मारते 21 बार ऐसे गए वो गोल, लेकिन कहते 350 बार अयोध्या से गुजरे वो, इस जो भी उन्होंने भ्रमण किया, जिस भी रास्ते से किया, 350 बार अयोध्या के यहां से गुजरे वो, और हर बार दशरथ महाराज ने एक विवाह किया, क्योंकि तो उनका डिस्काउंट था कि मैं उन राजाओं को नहीं मारूंगा जो विवाह करने बैठे हो, या उनको नहीं मारूंगा जो स्त्रियों से घिरे हुए हो, नारी कवच, समझ आया? जैसे ऐसे सब आप औरतें बैठी हैं, उसके बीच में कोई आके बैठ गया तो वह उसको नारी कवच हो गया ना उसका, वो व्यक्ति को नहीं मारूंगा जो नारियों के सहायता में बैठा हुआ है, उसको नहीं मारूंगा। तो कुछ लोग वो नारी कवच वाला फॉर्मूला अपनाते थे, लेकिन दशरथ महाराज ने हर एक बार एक एक विवाह किया, 350 एक्स्ट्रा पत्नियां, 353 हो गई, लेकिन 353 पत्नियों से भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कितनी आश्चर्य की बात है, कहते हैं कि द्वार अयोध्या में कोई उत्सव ही सेलिब्रेट नहीं हुआ कई वर्षों से। कहते हैं कि राजा दशरथ को इतना भय परशुराम का नहीं था, उतना पुत्र होने का दुख था, न होने का दुख था उनको। पुत्र होने का जितना दुख था वो बहुत ज्यादा था जितना भय उनको परशुराम से था, ऐसे वर्णन वाल्मीकि जी बताते हैं। और राजा का दुखी होने की वजह, इतना ऐश्वर्य संपन्न सब होने की वजह से भी, फिर भी कोई उत्सव, कोई एंजॉयमेंट, कोई फेस्टिवल मनाया नहीं गया, सब उत्सव आते गए, किसी ने मनाया नहीं। राजा के दुख और सुख में समरस थे प्रजाजन। फिर राजा बड़े उदास हुए, उन्होंने फिर एक दिन बहुत परेशान होके, उनके 2 ऋषि सलाहकार थे, एक गुरु वशिष्ठ उनके और एक वामदेव जी, और 8 प्रधान उनके मंत्री थे, मंत्रिमंडल था उनका बहुत सुंदर, के 8 नाम हैं और वो 8ों के अलग अलग गुण थे जिन्होंने पूरा राज्य को इतना सुंदरता से संभाला था। एकदम श्रेष्ठ मंत्रीगण थे, समर्पित भाव से भगवान के भक्त थे वो, और बड़े दिव्यता से अयोध्या का राज चलाते थे। तो 8 लोग और 2 ऋषि उनको लेकर मंत्रणा किया, तो उन्होंने रिपोर्ट डिस्कस किया उसके ऊपर कि बहुत बड़ी समस्या हो रही है, राजा उदास हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करवाओ। वो मीटिंग समाप्त हो गई। वशिष्ठ मुनि ने अश्वमेध करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनके बारे में पूरी अवगत कराया उनको, क्या क्या करना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए संकट को बचने से लिए, पूरा विधि में होता है ना, अपराध भी हो सकते हैं, गलती हो सकती है, सब समझा दिया उनको। और वो जब समाज समाप्त हो गई, सब लोग चले गए कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे अभी, उसके बाद सुमंत्र वहीं रुक गए 8 मंत्रियों से। उन्होंने कहा कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। उसमें यह भी चर्चा हुई कि अश्वमेध यज्ञ होगा, उसके बाद में पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। और यह भी चर्चा हुई कि श्रृंग ऋषि के द्वारा ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है, तब जाकर आपको उसका लाभ होगा। तो पहले अश्वमेध यज्ञ करना है, उसके बाद वो सफल होगा 1-2 साल के बाद में, तभी फिर पुत्र कामेष्टि का स्थिति पैदा हो जाएगा। तो 1 साल लगा अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए। अभी अश्वमेध यज्ञ का वर्णन करने जाएंगे तो थोड़ा 2 घंटे खत्म हो जाएंगे। इतना अश्वमेध यज्ञ इलैबोरेट होता है, इतना डिटेल में होता है कि वो कलयुग में तो हम खाली सुन ही सकते उसके बारे में, करने का तो चांस ही नहीं। वो सारा दिव्य अश्वमेध यज्ञ जो है वशिष्ठ के कुशल व्यवस्थापन में संपन्न हुआ। और वो घोड़ा जो था दशरथ का, वो इतना आदर था दशरथ का कि किसी भी राजा ने उस घोड़े को ललकारा नहीं, ना चुनौती दिया। सब लोग घोड़े को शरणागत होकर घोड़े को अपने घर में आके भोजन खिलाया, सबको खिलाया खाना, कोई युद्ध युद्ध किधर भी नहीं हुआ। लेकिन पूरे विश्व के राज्य में जाने के लिए 1 साल लगा, और लौट के आया अश्व, फिर अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। और अश्वमेध जब संपन्न हुआ तो उन्हें अभी पुत्र कामेष्टि होना चाहिए, पुत्र काम इष्टि यानी पुत्र के काम से इच्छा से किया हुआ यज्ञ। तो वो श्रृंगी को लाना है, तो श्रृंगी की कथा बताई उन्होंने। सुमंत्र ने क्या बताया कि मैं आपको एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सनत कुमारों से, जो 4 कुमार थे ना, सनत, सनंदन, सनंदन और सनत कुमार, इनसे मैंने सुना था कि आगे जाकर त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ जी के लिए श्रृंगी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे और पुत्र प्राप्ति होगी, ऐसे मैंने सुना था। तो उन्होंने फिर वो श्रृंगी का इतिहास दशरथ को सुनाया कि ये श्रृंगी भी बताना चाहिए ना, अगर उनसे यज्ञ करना है तो वो कौन है, ये उनका इतिहास कैसा है। विभांडक नाम के ऋषि के वो पुत्र थे, और विभांडक ऋषि इतने महान थे कि उनको लगा था कि अपने पुत्र को ना स्त्री का दर्शन भी नहीं होना चाहिए। जन्म से ही तुरंत अपने पुत्र को लेकर जंगल में चले गए, यहाँ पर कोई स्त्री नहीं है, कोई पकवान नहीं है, कोई पका हुआ अन्न नहीं है, केवल कंदमूल फल हर्ब्स जड़ी बूटियां खाकर उनको उन्होंने बड़ा किया, ऐसी जगह रखा, कोई स्त्री का दर्शन नहीं हुआ उनको। उधर युवा अवस्था में आ गए तभी उनको स्त्री क्या है पता ही नहीं, स्त्री नाम की चीज होती है यही पता नहीं, केवल पुरुषों को देखा उन्होंने। तो एक दिन रोमपाद राजा थे, एक रोमपाद जो दशरथ के बड़े अच्छे मित्र थे, उनको कोई संतान नहीं थी। दशरथ को एक कन्या हुई थी शांता नाम की, तो दशरथ ने प्रेम से अपनी शांता कन्या को उनको गोद दिया था, तो वो उनकी पुत्री हुई थी। तो रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, तो ऋषियों ने बताया कि आपके राज्य में अगर श्रृंग ऋषि से हाथ से तपस्या आप यज्ञ करते हो तो बरसात आएगी, ऐसे एक जगह लिखा है कि आप श्रृंगी ऋषि को लेके आएंगे ना, श्रृंगी को उनके चरण लगते ही आपके राज्य में वर्षा होगी, दोनों प्रकार का वर्णन है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कैसे लाया फिर उसको, बोले तो विभांडक का पुत्र है, श्री का दर्शन नहीं हुआ है, वो जंगल से बाहर आता ही नहीं है, कैसे उसको लेके आए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों को ऋषियों का रूप दे दिया, जो ड्रामा में करते हैं ऐसे जटावटा बना दिया, वो सुंदर बहुत सुंदर कन्याएं थी वो राज्य की, उनको ऋषि का रूप दे दिया। और उनको ना वो जंगल में जहाँ रहते थे उसके किनारे पे उनको बोला आप अपना झोपड़ी बनाओ फर्स्ट क्लास, और वहाँ अपना गाना वाना गाना चालू करो। तो उन्होंने अपना गायन वगैरह शुरू किया, फिर पुरुष दिख रहे हैं लेकिन आवाज़ बहुत मधुर, एकदम जैसे किसी पुरुष की नहीं होती है, ऐसे मधुर ध्वनि आने लगे, वाद्य बजने लगे, और ऐसे बहुत सुंदर वातावरण निर्माण हो गया। तो ये लकड़ी तोड़ने के लिए वहाँ आए, देखा तो कोई अजीब लोग हैं, तो उनसे मिलने गए वो, उन्होंने अपने मधुर कंठ में उनसे संवाद किया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बहुत अद्भुत प्रकार के पुरुष हैं, ये अद्भुत प्रकार के ऋषि है, कितने मोहक है, कितने आकर्षक हैं, क्या बात है इनके अंदर ऐसे। तो वो बात करते करते उन्होंने क्या किया ऐसा दूध का बनाया मिठाई है ना, वो राज्य का स्पेशल, वो उसको खिलाया, ये फल खा लो आप। तो वल जब फल खाया तो बोले ये तो अद्भुत फल है, ऐसा फल कभी खाया नहीं हमने। बोला ऐसे और भी फल है लेकिन आपको हमारे साथ में आना होगा। और क्या क्या पता है हमको, ये सब ऐसा पूरा भ्रमित कर दिया उनको। और जाने के समय ना सबने उनको अच्छा आलिंगन दिया जोरदार एकदम, उनको बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ कि कुछ अलग अलग लगा उनको, ये कुछ डिफरेंट है। तो रात भर वो सोचते रहे कि क्या है ये, इतना मतलब आनंद इतना क्यों आया मुझे। और वो फल भी था, इतना अच्छा फल था। अगले दिन वापस आएगा, वो वापस उन्होंने उनको कुछ और खिलाया, बहुत जोरदार गले लगाया। बोले चलो हम आपको ले चलते हैं, आपको ऐसे अद्भुत नगरी दिखाते हैं, वहाँ पर ऐसे और हमारे जैसे बहुत सारे हैं और अद्भुत फल भी वहाँ पर हैं मिठाई वाले। तो वहीं से चले जाते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं उनके राज्य में तो वर्षा आती है, और तब तक उनको फिर समझ में आता है कि कुछ डिफरेंट है यहाँ पर। तो राजा आते हैं, बोलते हैं माफ़ करने, हमारे लिए ऐसी समस्या थी, जल नहीं था तो हमने ऐसा ये करके आपको लाया इधर, अभी आप बुरा नहीं माने। उन्होंने भी अपराध स्वीकार नहीं किया उसका। और बाद में वो राजा बोले कि मेरी कन्या शांता जो है उसका मैं विवाह आपसे करना चाहता हूँ। तो वो राजी भी हो गए, उनका विवाह शांता से होता। मुझे को पता चला कि ये स्त्री है और ये मैं पुरुष पुरुष हूँ। उनको अंगदेश दे दिया उन्होंने और अंगदेश में बसने लगे वो। ये उनका इतिहास है। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ की ये कथा सुनते ही पुत्र अश्वमेध होने के बाद तुरंत ही दशरथ राजा अंगदेश चले गए। उन्होंने बड़े प्रेम से उनको निमंत्रण दिया और वो आए और उन्होंने अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया श्रृंगी ऋषि ने। और यज्ञ की, ऐसे कहते हैं कि यज्ञ की जो ज्वाला थी ना, इतना भव्य कुंड था कि उसकी ज्वालाएं स्वर्ग लोक तक पहुंच रही थी और किसी को कष्ट नहीं दे रही थी। जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया था तो ज्वाला उत्पन्न हुई थी, सब लोग परेशान हो गए थे स्वर्ग लोकों में, लेकिन ये जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ की ज्वालाएं पहुंच गई, सबको दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। और अंत में उसमें एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, रक्त और काले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य तेज पुंज वाला व्यक्ति पैदा हो गया, और उसके हाथ में वो खीर थी प्रसाद की। यज्ञ से प्रकट हो गया और दशरथ जी के उन्होंने वो खीर सुपुर्द किया, बताया अभी आपको पत्नियों को खिलाना है, आपको यथावकाश पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने वो अभी डिवाइड कैसे किया इसके ऊपर बहुत सारे मत हैं, लेकिन कोई भी मत हो क्या फर्क पड़ता है, प्रभु रामचंद्र तो आए ना, बस अपने के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। कोई कहते हैं कि उन्होंने वो खीर का पात्र दो पार्ट में डिवाइड किया और एक एक हिस्सा कौशल्या को दिया, एक हिस्सा कैकेयी को दिया, और दोनों ने अपने अपने से हिस्सा निकालकर दो हिस्से सुमित्रा को दिए। और भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्णन भी है, वो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन यथावकाश वो खीर के हिस्से प्राप्त करने के बाद में वो गर्भवती हो गई। हाँ अभी जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा था ना, तो यज्ञ में आहुति स्वीकार करने के लिए सब देवता लोग ऊपर से ऐसे नीचे आए, सबके सामने डिसेंडेड अवतरित हो रहे हैं नीचे। बहुत आनंद हो रहा है उनको क्योंकि आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, बहुत सुंदर सुंदर पवित्र घटनाएं हो रही है, दिव्य चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, तो बड़े आनंदित थे। लेकिन बड़े दुखी भी थे वो उस समय, और उनके साथ ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं। उनका बीच में संवाद हुआ कि ब्रह्मा जी आपने तो सब हमारे दुख का कारण तो आप ही हैं सब, एक्चुअली आपने वो, अभी मैं वो उपाख्या नहीं बता रहा हूँ, रावण के जन्म की कथा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन रावण का जन्म हो चुका था, विभीषण का जन्म हो चुका था और उसका भी जन्म हो चुका था कुंभकर्ण का, उसके पिताजी को भी ऐसा ही फंसाया गया था, वो ब्राह्मण थे, और ये जो कैकशी थी उनके पिताजी राक्षस थे। तो उनको लगा था कि एक ऐसा काम करते हैं कि जन्म जन्म तक हम देवताओं पर राज्य कर सकते हैं, ब्राह्मण का गुण हमको ना हमारे अंश में आना चाहिए। तो कैकशी को बोला कि आपको विश्ववस मुनि से शादी करनी है ताकि राक्षस और ब्रह्म तेज मिलकर जब पुत्र प्राप्ति होगी तो चिरंतन काल तक हम देवताओं पर कंट्रोल करते रहेंगे। तो कैकशी तैयार नहीं थी, वो ऐसा ही षड्यंत्र करना नहीं चाहिए, तो विवाह का समय ना, विवाह में कोई ऐसा चापलू से नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिता के प्रभाव से वो, प्रभु जी उसको आवाज नहीं करना, डोंट मेक एनी नॉइज। तो विवाह हुआ, विवाह के बाद में कैकशी के पति जो विश्ववस मुनि है उनको पता चला कि ऐसे कारण से मुझे विवाह किया गया है, तो उन्हें शाप दिया कि रक्त पिपासु राक्षस जन्म लेंगे आपसे गर्भ से। तो कहते मैं तो असहाय थे, मेरे पिताजी का आदेश था, क्या करूं, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत विनती की। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, एक वैष्णव पैदा होगा, ये दो रक्त पिपासु वाले जो है ना, वो वंश का नाश कर देंगे आपका, राक्षस वंश का, लेकिन वो विभीषण जो है तीसरा, वो बचाएगा आपको, कम से कम नाम शेष होने देगा, कुछ तो वंश को बचाएगा। इस तरह तीनों का जन्म हुआ। फिर तीनों ने तपस्या किया, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और बड़ी बहुत बड़ी लीला हो गई, ऐसा वरदान दिया कि वो प्रभावी हो गए, देवताओं को भगा दिया, उन्हें खदेड़ दिया। तो वो देवता क्या कह रहे ब्रह्मा जी को, आपके वरदान की वजह से ये सब परेशानी हो रही है। ब्रह्मा ने उनको समझाया कि मैंने ऐसे वरदान दिए हैं जो आपके हित में हैं, क्योंकि उनको मैंने ऐसा बहकाया है कि उनको लगा कि मानव और वानर क्या होता है, उसके लिए अभय मानने की जरूरत नहीं, हमारा तो खाना है, वो ब्रेकफास्ट है हमारा, उनसे अभय नहीं चाहिए हमको, देवता किन्नर यक्ष किन्नर जो लोग हैं ऐसे शस्त्र अस्त्र सिद्धियां, उनसे हमको अभय चाहिए, वो सब दे दिया है। तो प्रभु अभी मानव रूप में आएंगे और आप सब देवतागण वानर बनकर आएंगे, और वही उनका वध का कारण होगा। ऐसे करके सब समझाया उन्होंने, कि उसने कहा कि मुझे अनंत तक, क्या कहते हैं उसको, नित्य तत्व, ऐसे कहा उसने, मुझे चिरंतन होना है कुंभकर्ण में। तो सरस्वती उसके मुख पर जाके बैठी ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, और बोले निद्रा तत्व, बोले इंद्रासन चाहिए मुझे, तो बोला निद्रासन। ऐसे इसके मुख से अलग अलग वाक्य प्रकट हो गए, इंद्रासन चाहिए तो निद्रासन बोला, बोला आप बोला, मैंने हाँ तुरंत हाँ बोल दिया उसको, उसको मौका नहीं दिया करेक्ट करने के लिए। वो बोला नहीं सॉरी सॉरी, मैं दूसरा बोलना है, नहीं आपने बोला, मैंने हाँ बोल दिया तथास्तु। तो मैंने उनको बहका दिया पूरा सबको कंप्लीटली। तब विभीषण ने केवल भगवान की भक्ति मांगी, तो विभीषण को रावण शूर्पणखा और कुंभकर्ण ने बहुत गालियां दी, अरे कैसा भाई है तू, मूर्ख भाई है, कुछ मांग ले अभी अच्छा मौका है। बोला नहीं मुझे भक्ति चाहिए, बोले ये हमारे अंदर ना एक ब्लैक शिप है, इसने अच्छा मौका गंवा दिया है, और वो हमारा शत्रु का वरदान मांगा है, उस शत्रु का भक्ति करने का। शूर्पणखा बहुत कठोर पापी कठोर ऐसे बड़े बड़े सुपड़े जैसे नाखून वाली बनी, वो शूर्पणखा जिसके नाखून सुपड़े जैसे हैं, होता ना सुपड़ा अपना, ऐसे भयंकर थी वो शूर्पणखा। तो ये देवता लोग ब्रह्मा से थोड़ा झिकझिक कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी उनको समझा रहे हैं, एक्चुअली मेरे वरदानों का रहस्य ये है कि एक दिन वो सब आपके हित में ही प्रकट हो जाएंगे वरदान। थोड़े शांत हो गए फिर वो, और फिर उसमें जाकर फिर प्रकट हो गए, खीर प्रकट हो गई, उनको आहुति अर्पण हुई, देवताओं को प्राप्त हुई, और फिर वो गर्भवती हो गई। और अभी भगवान के जन्म का समय आ रहा है। हाँ बहुत लंबी लंबी कथा है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। रानियों की गर्भवती गर्भ धारण करने का जो कार्य था बहुत अलौकिक था, और जैसे ही रानियां गर्भवती हो गई, उनको भगवान के उपस्थिति का अंदर अनुभव हुआ। हाँ वो इतनी सुंदर हो गई कि वो स्वयं भी समझ रही थी और दशरथ भी समझ रहे थे और सब समझ रहे थे कि इनके अंदर भगवान का अंश है। देखो भगवान के भक्त जो है ना, वो ऐसे बहुत तेजस्वी क्यों दिखते हैं, क्योंकि भगवान उनके अंदर निवास करने लगते हैं, भगवान का अस्तित्व प्रभावशील तरीके से उनके अंदर प्रकट हो जाता है, और भगवान का अस्तित्व जिनके अंदर है वो तेजपुंज हो जाते हैं। देवकी भी ऐसे ही तेजपुंज हो गई थी, सच्ची माता भी तेजपुंज हो गई थी। हाँ कारागृह में थी लेकिन प्रकाश पूरा अंधकार काल कोठड़ी में पूरा प्रकाश दिव्य प्रकाश फैल गया था। तो जब हम भजन करते हैं भगवान का भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं, है तो है ही अंदर वो, लेकिन वो प्रकट स्वभाव से अपना अस्तित्व दिखाने लगते हैं, उसका तेज भगवान के भक्तों के चेहरे पर आता है। इसलिए हमेशा हरिकथा बोलना और हरिकथा श्रवण में रहना चाहिए ताकि भगवान का अस्तित्व और तेज हमारे अंदर बना रहे और उसकी वजह से आनंद बना रहे और दुख दूर होते रहे। ऐसे रानियों ने अनुमन किया, और जो आनंद और सद्गुणों का स्रोत है, सौंदर्य का स्रोत है, ऐसे भगवान उनके अंदर विराजमान थे। और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान प्रकट हो गए। उस समय वसंत ऋतु था, आज भी वसंत ऋतु में उनका जन्म होता है, और नक्षत्र पुनर्वसु था, मध्याह्न का समय था, और सारे शुभ ग्रह श्रेष्ठ स्थान में थे, और पृथ्वी पर उस समय असामान्य लक्षण पैदा हो गए। कैसे असामान्य क्यों,
जो उस समय नहीं होना चाहिए वो हो गया।
फॉर एग्जाम्पल, कभी 6 ऋतु साथ में आते हैं क्या? 1 ऋतु साथ में आता है ना, कि सारे ऋतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक साथ प्रकट हो गए। ऐसे असामान्य लक्षण प्रकट हो गए जो आमतौर पर नहीं होते हैं। और प्रभु राम का जन्म हुआ, जैसे प्रभु राम अवतरित हुए ना, सब जगह नव चैतन्य का संचार हो गया। सब पृथ्वी में ऐसा लगा कि कोई नई लहर दौड़ गई आनंद की। जो सुस्त थे, दुखी थे, वो भी आनंदी हो गए। जो गरीब थे, वो धनी राम हो गए। इस प्रकार का चमत्कार सब सृष्टि में प्रकट हो गया। और उस समय पहली बार सभी लोगों ने उत्सव मनाना आरंभ किया, इतने सालों के बाद। हाँ, राजा को सुख हुआ, तब उनको सुख का अनुभव होने लगा। भय और चिंता का नाश हो गया भगवान के आते ही। और भगवान का पूर्णिमा के चंद्र जैसे मुख कमलता, ऐसे कहते हैं कि चंद्र भी संकुचित हो गए उस समय, क्योंकि तो भगवान सूर्यवंश में आए ना, राधा रानी और सीता देवी सब चंद्रवंश की हैं, तो प्रभु जो है ना वो सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी हैं, जिसमें रघु जी का जन्म हुआ है उस वंश में। अपार तेजस्वी और दैत्यमान का रूप था, मुलायम गोलाकार गाल थे उनके, रक्तवर्णी कमल दलों जैसे विशाल नेत्र थे, और दुर्वा जैसे, फ्रेश दुर्वा जैसे उनका रंग था, हरे रंग का, हरे रंग की कांति थी, और घुंघराले पूर्ण विकसित केश थे जन्म के समय उनके। दशरथ के अयोध्या में सर्वत्र महोत्सव का वातावरण बन गया, प्रजा ने उत्सव मनाना आरंभ किया। शाश्वत चैतन्य और ताजगी का प्रतीक, स्वतंत्रता और अनंतता और शाश्वती का प्रतीक भगवान अवतरित हो गए। और देखिए क्या भाव था, जब वो खीर प्रसन्न किया ना कौशल्या ने, तो उन्होंने ऐसे इच्छा की थी कि पूरे विश्व को आनंद प्राप्त करने वाला बालक मुझे प्राप्त हो। सुमित्रा ने इच्छा की थी ऐसा, देखो सुमित्रा ने जब वो ग्रहण करने का समय आया ना, तो रुकी रही वो, पहले 2 रानियों ने प्राप्त किया तब तक रुकी रही वो, और फिर 2 हिस्से उसने खाए। वो खाते वक्त क्या इच्छा किया, इनको जो पुत्र होंगे उनके सेवक के रूप में मुझे पुत्र होने चाहिए, मेरे जो पुत्र होंगे वो उनकी सेवा में लगे रहेंगे। सुमित्रा जी का जो भाव था वही भाव लक्ष्मण में और शत्रुघ्न में आया, कौशल्या में जो भाव था वो राम में आया। इसलिए राम नाम क्यों रखा गया, रमंती इति रामः, सभी को वो रमण कराते हैं, सभी को आनंद देते हैं, सबको आनंद का अनुभव देते हैं, इसलिए उनका नाम राम रखा गया। अभी नवमी का क्या रहस्य है, 9 अंक का क्या रहस्य है? 9 के पाड़े में आप कोई भी अंक गिनिए, कौन सा गिनना चाहते हैं आप? 9 7 गुणेंगे कितना आएंगे, 63। अभी आप 6 और 9 को मिलाइए कितने हो गए, 9। अभी 9 और 9 को गुणित कीजिए कितने हो गए, 81। 8 और 1 कितने होते हैं, 9। इस तरह से 9 के गिनती में कुछ भी करो आप, 9 ही पैदा होंगे। तो 9 ये शाश्वती का लक्षण है, चिरंतनता का लक्षण है, कहीं भी घुमा फिरा के जाएंगे तो 9 ही आएंगे आपको। तो भगवान जो है ना वो बता रहे हैं कि मेरे आने से शाश्वती पैदा होगी, स्थिरता पैदा होगी, सब जगह पर आनंद पैदा होगा। जब वो जन्म हो गया राम जी का, तो एक अद्भुत घटना हुई, वो आपको बताना जरूरी है। एक तो कैकेयी और सुमित्रा भाग के आए, उनके आप पहले से पेट में भगवान विराजमान है ना, भगवान के अंश विराजमान है, भाग के आ गई वो। और जैसे ही वो कौशल्या के गर्भगृह में प्रवेश किया और बालक को देखा, तो उनके दोनों के गर्भ में ऐसी उछल उछल पैदा हो गई, वो जो गर्भ के अंदर है ना वो ऐसे उछलने लगे, और दोनों ने एक बार उसका अनुभव किया साथ में, और अनुभव करके एक दूसरे को देखा कि हाँ जो तुझे हो रहा है वो भी मुझे हो रहा है, जो मुझे हो रहा है तुझे हो रहा है, ऐसे नेत्र से इशारा किया, और समझ गए कि हमारे बालक जो है ना वो बड़े उत्सुक है। ऐसा अनुभव किया कि ये दोनों बालक, जो भी 3 बालक है ना, एक में 1 है और 1 में 2 है, तीनों उत्सुक है उसका संग लेने के लिए जो उसका जन्म हो चुका है ऑलरेडी। और अगले दिन दोपहर के समय कैकेयी ने अपने बालक को जन्म दिया, और उसी दिन उसकी कुछ देर बाद में सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया। अब ये 4 बालक जैसे 4 वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, ये 4 जो चतुर्व्यूह है उसके अवतार है। वासुदेव के अवतार राम है, संकर्षण के अवतार लक्ष्मण है, और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के अवतार शत्रुघ्न और भरत हैं। तो ये अभी उत्सव मनाने जा रहे हैं, इतने में प्रभु राम को अपने गोद में लेकर दशरथ घर से बाहर निकल जाते। सबको आश्चर्य होता है, अरे कहाँ जा रहे हैं, बता नहीं रहे कुछ नहीं, सीधा उठाते उसको गोद में लेके घर के बाहर, महल के बाहर, राज्य की सीमा के बाहर तक पहुंचाते। सब लोग उनको देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, निश्चित रूप से देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो उस दिशा में देख रहे हैं। उस दिशा में देखते हैं कि अयोध्या की सीमा पर एक बहुत बड़ा गिदड़ आके बैठा हुआ है। अभी पवित्र समय पर गिदड़ का आना बहुत अशुभ माना गया है। तो ऐसा क्यों है, इतना आनंद का समय इतने सालों के बाद में आया, अब गिदड़ क्यों आ गया इधर, और ये भी जा रहे हैं गिदड़ की ओर, और देख रहे हैं गिदड़ को मिले ही ये जाके, अभी दूर में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, क्या वार्तालाप चल रहा है। दशरथ महाराज राम जी को लेकर जटायु को मिलने गए, जटायु वहां पर जन्म के समय पर आ गए, उनको पता चला कि प्रभु ने जन्म लिया, इनको बालक प्राप्ति हो गई है, तो वहां पर आके विराजमान हो गए। वो अंदर नहीं आते, वो सीमा पर खड़े रहते हैं, तो उनको बालक सुपुर्द करते हैं। क्या कथा है उसकी, क्यों आए ऐसे वो, क्योंकि एक समय पर शनि देव का और दशरथ जी का युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ, क्योंकि दशरथ जी के अयोध्या में इतना समृद्धि थी, इतनी दिव्यता थी, इतनी आध्यात्मिकता थी, कि वहां पर शनि का काल ही कभी हुआ नहीं। शनि भी इतने प्रभावी थे अयोध्या के राज्य को देख करके, उन्होंने अपना काल का प्रभाव वहां पर दिखाया नहीं, शनि काल वहां पर हुआ ही नहीं। लेकिन बहुत साल बीतने के बाद शनि को लोग, अभी बहुत हो गया, अभी एक बार तो जाना ही चाहिए, इतना डिस्काउंट तो दे दिया मैंने, लेकिन मैं जाऊंगा वहां पर। तो क्या हुआ पता है, कि अयोध्या के राज्य में जल की व्यवस्था इतनी सुंदर थी, देवमात्रक नदी मात्रक ऐसी व्यवस्था थी। देवमात्रक यानी कि जब वर्षा होगी तो भगवान की दया से होगी, नदी मात्रक यानी जो नदी के रूप में बह रहा है पानी, उसको ऐसे जमा करके रखने का कि सालों साल तक वो पर्याप्त रहेगा। तो एक समय 11 साल बारिश नहीं हुई, क्योंकि शनि ऑलरेडी प्रभाव अपना शुरू कर चुका था, लेकिन 11 साल तक अयोध्या के किसी भी नगरवासी को लगा नहीं कि पानी नहीं है, इतनी सुंदर व्यवस्था थी। 11 साल के बाद में पानी की कमी महसूस करने लगे, तब दशरथ को खबर मिली कि क्या हो रहा है, तब बोले कि बारिश नहीं आई 10 साल तक। अरे क्यों नहीं आई, शनि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो तुरंत दशरथ राजा ने सैन्य को बुलाया, चलो शनि पर आक्रमण करते हैं, शनि को परास्त करते हैं। सेना लेकर गए, सेना तो पीछे रह गई, वो अकेले आकाश में उड़े और शनि को आह्वान दिया, उन्होंने ललकारा, चुनौती दिया, तो शनि भी आए और दोनों का युद्ध हुआ। तो शनि ने ऐसा अस्त्र चलाया कि दशरथ महाराज बेहोश हो गए, और बेहोश होकर आकाश से जमीन पर गिरने लगे। उस समय जटायु वहां पर उड़ रहे थे, क्या भगवान की लीला थी, जैसे ही ये गिरने लगे ना, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तेजी से गिरने लगे, तो ये उसके तेजी से नीचे चले गए, अपना पंख फैलाया और उनको झेल लिया उन्होंने, और फिर आराम से उनको लेकर वो जमीन पर आए और उनका शुश्रूषा किया, उनको होश में लाया, उनको ठीक किया। जैसे होश में आए बोले, कहाँ हूँ मैं, कहाँ है शनिदेव, तो बताया कि प्रभु आप बेहोश हो गए थे, मैंने उनको आपको पकड़ा, नीचे लेके आए, शुश्रूषा किया आपको, नहीं नहीं अभी ले चलो मुझे आप, तो तुरंत उसको लेकर वापस आकाश में गए, और जहाँ रथ था वहां पर उनको विराजमान किया, शनिदेव वहीं पर खड़े थे। लेकिन केवल पृथ्वी का एक राजा मुझसे ग्रस्त होकर, बेहोश होकर, दोबारा उठकर मेरे सामने खड़े रहने का साहस कर सकता है, इसी बात से शनि महाराज प्रसन्न हो गए, बोले ये क्या वीर है व्यक्ति, मुझसे घायल होकर गिरने के बाद भी कोई खड़े होने की हिम्मत कर सकता है मेरे सामने, क्या वीर है। वो देखकर बोले, कोई बात नहीं, कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आऊंगा आपके अयोध्या में। ऐसे राजा थे दशरथ, केवल शस्त्र बल नहीं था, केवल शूरता नहीं थी, दिव्यता भी थी, भक्ति की शक्ति भी थी उनके अंदर, पवित्र था उनके अंदर, पावर ऑफ प्यूरिटी उनके अंदर थी। तो उस समय उन्होंने जटायु को वरदान दिया कि जब मेरा पहला पुत्र होगा ना, मैं आपको दूंगा उसको। और रघुकुल का क्या रिवाज है, प्राण जाई पर वचन न जाई, इतना आनंद का प्रसंग है। ऐसे कहते हैं कि दशरथ महाराज जब मिलने गए ना अपने पुत्र को, तो क्या क्या सोच कर रखा था पहले, कि जब पुत्र होगा तो मैं ये दान दूंगा, ये करूंगा, गाय करूंगा, वंडियों को दान दूंगा, गाने वालों को दान दूंगा, सब लोग थे वहां पर, लेकिन इतने भाव विभोर हो गए, किसी को कुछ दान नहीं दिया हो, ऐसे पागल जैसे हो गए हो, इतने भाव विभोर थे। लेकिन उसमें भी उनको अपने खुद ने दिया हुआ वादे की याद थी, नारद मुनि भी ऐसे ही थे, भाव विभोर तो हो गए थे, लेकिन जन कल्याण और जो करुणा थी उसको नहीं भूले वो। उस प्रकार से दशरथ भी नहीं भूले, कि हमने वादा किया था, और तुरंत लेकर चले गए। तब जटायु ने कहा कि मैं तो गिद्ध हूं, पक्षी हूं, मुझे मनुष्य के बालक को संवारने का और लालन संपालन करने का कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो आप अपने पास ही रखो इसको, जब ये युवा हो जाएगा, आप उसको बड़ा करके युवा करेंगे, तब मैं ले लूंगा उसको वापस। तो फिर दशरथ जी का प्रेम संवाद होना और वापस वो गोद में लेकर राम जी को लेकर आए, और तब उन्होंने कहानी बताई कि ऐसे ऐसे था इसलिए मैं गया था। सब रानी बोले अच्छा हो गया कि गिद्ध ने कृपा किया हमारे ऊपर। तो वो है जटायु जी। तो इस तरह से प्रभु का जन्म हुआ और अयोध्या नगरी में आनंद हुआ, और दशरथ महाराज ने कुछ डिक्लेयर कर दिया एज अ राजा, 7 वर्ष तक कर माफ कर दिया, तिजोरी खोल दी और बताया कि जो चाहिए ले लो, जिसको क्या चाहिए मांगो ले लो, शस्त्रों को विश्रांति दिया, बोलो अभी शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है, सब लोग मिलिट्री प्रैक्टिस छोड़ दो कुछ समय के लिए, कैदियों को मुक्त कर दिया, अखंड धार्मिक अनुष्ठान आरंभ कर दिए, सब राज्य में इस जगह जगह पर मंदिरों का निर्माण किया, देवी देवताओं के मंदिर स्थापन किए, उनकी भव्य पूजा करवाई उन्होंने, और सब मंदिरों को उन्होंने अपने खर्चे से सुशोभित कर दिया। मतलब एक कैसे ना, जब आनंद होता है ना तो भक्त व्यक्ति जो है ना वो दिव्य कार्य ही करता है, वो और कोई कार्य नहीं करता है, इट इज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ओनली, इट इज साइन ऑफ अ डिवोटी, वेदर ही बिकम्स अनहैप्पी ही विल डू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बिकम्स वेरी हैप्पी ही ऑल्सो डज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। भक्तों के जीवन में सुख या दुख हो, वो भगवान के लिए ही सब कार्य करते रहते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको वो 4 कारण बताता हूँ जिसके लिए भगवान राम ने जन्म लिया, और वहां पर हम कथा का विश्राम करेंगे। एक कारण है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। देवता लोग सब परेशान थे रावण के आतंक से, कुंभकर्ण रावण के आतंक से परेशान थे, तो उनको उन्होंने भगवान से विनती किया था, और ऐसे कहते जब ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रहे थे कि मैंने आपको कैसे आपके हित में वरदान दिया है, उसी समय वहां पर विष्णु प्रकट हो गए, उनका संवाद समाप्त हुआ और उनके बीच विष्णु प्रकट हो गए, और विष्णु भगवान ने कहा कि मैं अभी पुत्र कामेष्ट यज्ञ समाप्त हुआ है, अभी मैं आने ही वाला हूँ, इसके प्रसाद के भाव रूप से कुछ ही समय पर मैं आऊँगा। 12 महीने के बाद में जन्म लिया उन्होंने, वो खीर खाने के पश्चात। तो एक संतों की देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान ने जन्म लिया, और दूसरा विनाशाय च दुष्कृतान, राक्षसों का वध करने के लिए जन्म लिया, रावण के आतंक से बचाने के लिए, और तीसरा भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए लिया। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान से विनती किया था कि ये देखो आप, मैं आपसे एक निकट एकांत संग करना चाहती हूँ, लेकिन क्या कहें, वैकुंठ में हमेशा कहाँ बैठते हैं हम लोग, वैकुंठ में कहाँ बैठते हूँ, शेषनाग पर, तो हमेशा शेषनाग वहीं पर रहते हैं, कॉन्स्टेंटली इज विथ अस, एकांत कहाँ पर है, वो सारे देवता आगे पीछे आप भक्तों के बीच में ही लदे रहते हो, हमेशा भक्तों के आवरण में रहते हो, मुझे एकांत का थोड़ा अनुभव करना है आपसे। तो भगवान ने कहा पृथ्वी पर अवतार लूंगा तब आपसे एकांत निवास करूंगा। तो उन्होंने 12 साल, जो कितने साल, 13 साल उन्होंने एकांत चित्रकूट में निवास किया। वो खुद लक्ष्मण थे लेकिन दूर थे, हमेशा दूर, ऐसा ही बोलते ना, इनविजिबल बट अवेलेबल, समझ में आया, गुरु का सेवक भी ऐसे होना चाहिए, इनविजिबल बट अवेलेबल ऑल द टाइम, दैट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट सर्वेंट ऑफ अ गुरु और आचार्य। तो लक्ष्मण जी हमेशा इनविजिबल बट अवेलेबल थे, हमेशा सब सेवा करते थे लेकिन बीच में कभी ऐसे दखल देते नहीं थे, तो उनको पूरे एकांत का अनुभव दिया उन्होंने 13 साल तक चित्रकूट में। उसके बाद दंडकारण्य में आए तो फिर आगे का लीला शुरू हुआ। तो भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए कौन से रस में, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, इन सब रसों में आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया। ऐसे कहते हैं कि भगवान ने 12 साल जो बिताए जन्म के, उसमें तो 353 रानियां उनके आगे पीछे मंडराती थी, इतने सुंदर बालक, 4 बालक, 353 रानियां हमेशा घिरी रहती थी उनको। फिर विवाह हुआ तो 12 साल भगवान ने घर में रहे, तभी भी वो सीता जी के इतने लुभावने रूप से वो माताएं जो थी ना, मतलब सासुएं, वो इतनी प्रभावित थी कि उनको छोड़ के हमेशा उसके इर्द गिर्द रहती थी। तो कहते कि तभी भी उनको एकांत नहीं मिला, फिर वनगमन के बाद में एकांत मिला उनको। और चौथा रीजन जो है ना बहुत रोचक रीजन है, वो ये है कि श्री रंगनाथ जी, तो ना रंगनाथ जी सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने विष्णु को ब्रह्मा जी ने रंगनाथ जी का मूर्ति दिया पूजन करने के लिए। सृष्टि के शुरुआत में भगवान विष्णु ने अपना विग्रह श्री रंगनाथ जी के रूप में ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक उनकी आराधना की और फिर सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु उसको यह मूर्ति सौंप दी। इक्ष्वाकु के कई पीढ़ियों ने इन मूर्ति की सेवा की, एक एक राजा करके करते करते फिर उसमें रघु आए और रघु ने भी इनकी सेवा की और ऐसे करते 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 दशरथ महाराज उस वंश में आए और दशरथ महाराज ने फिर रंगनाथ जी की मूर्ति उनके हिस्से में आई और उन्होंने भी कई साल तक सेवा की। इतने श्रेष्ठ रघुकुल के राजाओं ने उनकी सेवा करने के बाद भी रंगनाथ जी को परिपूर्ण सेवा की प्यास बनी रही, इसलिए भगवान ने खुद ही अवतार लिया रंगनाथ जी सेवा परिपूर्ण करने के लिए। वही भगवान है लेकिन वही भगवान नहीं, अपने भगवान अपने भगवान के अलग रूप की सेवा करने के लिए पर्याप्त रूप में, जैसे भक्ति कैसे की जाती है इसे सिखाने के लिए स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु बनकर आए। भगवान ही भगवान अपनी भक्ति करके दिखा रहे हैं कैसे करनी है, वैसे भगवान के विग्रह का पूजन कैसे करना है आदर्श रूप में पर्याप्त मात्रा में रंगनाथ की संतुष्टि के लिए, उसके लिए भगवान राम बनकर आए, रघुवंश में दशरथ के पुत्र बनकर आए और समर्पण और आराधना का एक दिव्य आदर्श उन्होंने स्थापन किया। और फिर जब भगवान ने रावण को मारा और भगवान अयोध्या में आए तो विभीषण भी आए थे वहां पर, मुझे आपका राज्याभिषेक देखना है। तो विभीषण जब आए तो भगवान ने उनको रंगनाथ जी का मूर्ति सौंप दिया कि दिस इज गिफ्ट फॉर यू, आप उनको लंका में ले जाइए वहां पर उनका पूजन कीजिए। तो दशरथ विभीषण जी उनको लेकर आ रहे थे दक्षिण की ओर, जब किनारे पहुंच गए अभी आगे समुद्र से जाना है तो भगवान वहीं रह गए। उन्होंने कहा मैं वहीं विराजमान रहूंगा, आप जाइए लंका में, मेरा हाथ जो है ना वो लंका की ओर आशीर्वाद के रूप में हमेशा रहेगा और मेरी नज़र जो है वो भी लंका में हमेशा रहेगी, मैं यहाँ रहकर आपको आशीर्वाद देता रहूँगा और आपको अवलोकन भी करता रहूँगा, विजिलेंस। और भगवान वहीं रह गए, वहाँ से आगे लंका में चले गए। इस लंका पर जो है श्री रंगनाथ जी का आशीर्वाद के रूप में दृष्टि वहाँ पर विराजमान है। तो ये भगवान के चार कारण हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, वो ऐश्वर्य और शक्ति और भौतिक साधनों से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, वो केवल भाव से रिझते हैं और भाव से ही हम उनको जीत सकते हैं। तो इस तरह से अधिक मास के समय पर ये कथा का प्रयोजन इसलिए किया गया कि हम सब भगवान की कथा में रममाण हो जाएं, कुछ सुनने के बाद में कुछ खुद पढ़ें, इसी भाव में रहें, इसी में लीन रहें, यही दुखों के निवारण का एक परम मार्ग है, इसी को हमको अपनाना चाहिए। और जो व्यक्ति इस जीवन में भगवान के चिंतन में भगवान की लीलाओं के स्मरण में अपने आप को मग्न कर सकता है वो धन्य है क्योंकि उसी से भगवत प्राप्ति होने वाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।